ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलास आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में मैं अब विशेष कार्यक्रम छांदोग्य उपनिषद ज्ञान यज्ञ सामवेद के अंतर्गत यह छांदोग्य उपनिषद कल तक द्वितीय अध्याय में 16 खंड हो गया था, सप्तदश चलेगा। सौंदर्य सरिदुत्थान माधुर्य यमनुद्गम श्रेय सरस्वती रंभो पूर्वो ब्रह्मास्मि संगम निरतिशय माधुरम निरतिशय कल्याणम तेषां ब्रह्मास्मि मेलनम ब्रह्मांडरेण गोरुमणि यस्या संख्यात कोटयः विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योम ब्रह्मास्मि वेष्टनम नेति नेति निषिद्धं तत् पिंड ब्रह्मांड गोचरम बाधावधिर्हि सच्छिष्टम् सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत् गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्य त्वेकरूपता जगतो नेकरूपत्वे क्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम् अहं ब्रह्मास्मि चैकलम्। ब्रह्मास्मि माला शांति मंत्र के साथ ही ये भी शांति पाठ के अंतर्गत ब्रह्मास्मि ब्रह्म चिंतन ही सबसे ये कल्याणप्रद शांतिप्रद है। अभी छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय में सप्तदश खंड चलेगा। पृथ्वी हिंकारवंतरिक्षम प्रस्तावो द्योरुद्गीथो दिशः प्रतिहार समुद्र निधनम एतः सक्वर्यो लोकेषु प्रोताः। साम के भक्ति तो अलग अलग कहेगे, पांच भक्ति का साम, पांच भाग वाले साम, सात भाग वाले साम, साम के नाम भी अलग 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 साम के नाम लेकर के उपासना है। लोक दृष्टि करके हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करे भाग में, प्रथम भाग में, द्वितीय भाग प्रस्ताव में अंतरिक्ष आकाश दृष्टि करे, तृतीय भाग उद्गीत में द्योग स्वर्ग दृष्टि करे, प्रतिहार में दिशा की दृष्टि करे, निधन में समुद्र दृष्टि करे। एतः स्वक्वर्यो लोकेषु प्रोताः, ये स्वक्वर्य साम का नाम स्वक्वरी बहुवचन स्वक्वर्यो लोकेषु प्रोताः, लोक में आश्रित है तो लोक दृष्टि से इस साम की स्वक्वरी साम की उपासना। स एवं एतः स्वक्वर्यो लोकेषु प्रोताः वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या लोकान निंदेत तद व्रतम। स जो ऐसे चिंतन करता उपासना करता एता स्वक्वर्यो स्वक्वरी नामक साम लोक में आश्रित है, इस साम की उपासना लोक दृष्टिया करता है। इसमें एक एक भाग में पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग आदि दृष्टि करके उपासना करता है। लोकी भवती लोक वाला होगा, लोक फल से युक्त होता है, सारे लोक फल उसको प्राप्त होता है। सर्वम आयु रीति संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। शतायु वही पुरुष 100 साल आयु मध्य में मृत्यु नहीं को प्राप्त करता है। ज्योग जीवती ज्योग उज्ज्वल जीवन होता है, उज्ज्वल जीवन कहा गया था जो स्वयं शास्त्रीय मार्ग पर चलता है, स्व उपकार करता है, परोपकार भी करता है, उज्ज्वल जीवन है। महान प्रजया प्रजा से भी पशुओं से युक्त होकर के महान होता है, कीर्ति से भी महान होता है। और उसका व्रत है लोकानन निंदे तद व्रतम, किसी लोक कहीं भी जो जैसे संसार में चलता है किसी की निंदा नहीं करे। सारे लोक में सब अलग अलग लोक के अनुसार फल है, लोक वाला है, जीव सब अलग अलग फल प्राप्त करते हैं, लोकों की निंदा नहीं करे। ऐसे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ साम उपासक के विभिन्न स्थल पर निंदा नहीं करे ये ध्यान दिया। अजा हिंकारो अवय प्रस्तावो गाव उद्गीतो अश्वः प्रतिहारः पुरुष निधनम एता रेवत्यः पशुषु प्रोता। यह हिंकार में अजा बकरा दृष्टि करे, प्रस्ताव में अभी भेड़, उद्गीत में गौ और प्रत्याहार में अश्व दृष्टि करे, निधन में पुरुष दृष्टि करे। एता है रेवत्यः, रेवती नाम का साम, रेवत्यः बहुवचन है, पशुष प्रोता पशु में आश्रित। ये साम सर्वात्मक है, पर ब्रह्मात्मक है, सारे ये पशु लोक वेद सब कुछ उसमें आश्रित है। पशु सुप्रोता पशु में आश्रित है रेवती साम, पशु दृष्टि करके साम की उपासना, उपास्यता साम है, लोक दृष्टि करके यहाँ पशु दृष्टि करके उपासना करे। सय एवं एता रेवत्य पशु सुप्रोता वेद पशुमान भवती सर्वमायुरेति ज्योग जीवती महान प्रजया पशुभिर् भवती महान कीर्त्या पशु न निंदे तद व्रतम। जो इस प्रकार रेवती नाम का साम पशु में आश्रित है, वो साम की उपासना पशु दृष्टिया करता है, पशुमान भवति पशु रूप फल प्राप्त होता है उसको। और सर्वम आयुरेति संपूर्ण सौ पर्याय में एक आगे अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जियोग जीवती सब का फल जियोग जीवन उज्जवल जीवन, उज्जवल जीवन उज्जवल होता है, शास्त्रीय मार्ग पर चल रहा है, सन्मार्ग पर अपने विहित कर्म करता है, सब उपकार करता है, परोपकार करने के लिए समर्थ परोपकार भी करता है, तो उज्जवल जीवन होता है। महान प्रजया पशु भी भवती प्रजा से भी महान होता है, पशु से युक्त होकर महान होता है, कीर्ति से भी महान होता है। पशु न निंदे तद व्रतम पशुओं की भी निंदा नहीं करे उसका व्रत है। लोम हिंकार स्तक प्रस्तावो मांसम उद्गीतो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनम एतद् यज्ञायज्ञम् अंगेषु प्रोतम। यज्ञायज्ञ नामक साम है, अंग में आश्रित है, शरीर में अंग में। लोम हिंकार, हिंकार की उपासना करे साम के प्रथम अवयव हिंकार, पांच भाग वाले साम में प्रथम भाग है हिंकार, उसमें लोम दृष्टि करके उपासना करे। और प्रस्ताव द्वितीय भाग उसमें त्वक चर्म दृष्टि करे, त्वक दृष्टि करके उपासना करे। उद्गीत है तृतीय, उसमें मांस दृष्टि करके उपासना करे। चतुर्थ है प्रतिहार, उसमें अस्थि हड्डी अस्थि दृष्टि करके। और पंचम है निधानम, उसमें मज्जा अस्थि के अंदर रहते मज्जा इसे दृष्टि करके। एतद् यज्ञायज्ञम् अंगेषु प्रोतम, देह के अवयव में अंगों में यज्ञायज्ञ नामक साम आश्रित है, तो साम की उपासना करे। यज्ञायज्ञ साम की उपासना ऐसे अंग में अंग दृष्टि करके, लोमत्व मांस अस्थि आदि दृष्टि करके। स एवं एतद् यज्ञायज्ञम् अंगेषु प्रोतम वेदांगी भवती नांगेन विहूर्छति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर् भवति महान कीर्त्या संवत्सरमज्ञ नाशनीयात् व्रतम अज्ञ नाशनीयादिति वा। जो इस प्रकार एवं इस प्रकार एतद् यज्ञायज्ञम साम है, यज्ञायज्ञ साम का नाम अंग में आश्रित है, वे शरीर के अवयव में आश्रित है, उसको वेद उपासना करता है, अर्थात साम की यज्ञायज्ञ साम की उपासना अंग दृष्टि करके, शरीर के अंग दृष्टि करके उपासना करता है। प्रत्येक पर्याय में अलग अलग दृष्टि करके पूरा सारे लोक सारे ब्रह्मांड दृष्टि हो जाती साम में। साम सब का अधिष्ठान रूप सम रूप है, ऐसे सर्वात्मक है, ऐसे उपासना अलग अलग पर्याय में कहते हैं। तो जिस दृष्टि से उपासना करता है उसका विशेष फल है, और बाकी सामान्य फल सबका कीर्ति से महान होता है और उज्ज्वल जीवन होता है, पशु प्रजा से युक्त होता है, ये सामान्य फल है। यहाँ भी इस प्रकार विशेष फल है, अंगी भवती संपूर्ण अंग वाला होता है, अंग का वियोग नहीं होता है, न अंगे न विहुर्छति, अंग से विहुर्छति कुटिल नहीं होता है, अंग विहीन नहीं होता है, पंगु आदि नहीं होता है, सर्वम आयु रीति संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन होता है, प्रजा पशु से भी महान होता है, कीर्ति से भी महान होता है। ऐसे जो अंग दृष्टि करके शाम उपासना करता है, संवत्सरम अज्ञ नाशनियात, जो लोग खाते हैं मांस मज्जा एक वर्ष नहीं खाए, अथवा न अज्ञ नाशनियात मज्जा अस्थि की मज्जा कभी नहीं खाए, ये व्रत उसका है जो इसे उपासना करता है। अलग अलग व्रत में अलग अलग उपासना है। यहाँ बहुवचन दिया है तो भाष्यकार भगवान कहते हैं बहुवचन देने से अन्य कोई भी ऐसे मत्स्य अथवा कुछ मांस कुछ नहीं खाना चाहिए। अग्निर्हिंकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गितो नक्षत्राणि प्रतिहारश्च चंद्रमा निधनम एतद् राजनम देवता सुप्रोतम। राजन नाम का साम है, अलग अलग साम है, 1000 शाखा है साम वेद में, और मंत्र भी विभिन्न प्रकार है। साम में तो 5 भाग 7 भाग कह करके उपासना कही गई, किंतु साम के नाम भी अलग अलग साम है, तो उसमें साम के अलग अलग साम के नाम लेकर के उपासना कहते हैं। तो वो 5 भाग वाले साम की उपासना है, किंतु वो 5 भाग वाले साम का नाम भी बहुत अलग अलग है। राजन नाम का साम है, उसकी उपासना करे। अग्नि भी हिंकार, साम के प्रथम भाग हिंकार में अग्नि दृष्टि करे, द्वितीय भाग प्रस्ताव में वायु दृष्टि करे, तृतीय भाग उद्गीत में आदित्य सूर्य भगवान दृष्टि करे, चतुर्थ प्रतिहार में नक्षत्र दृष्टि करे, और पंचम है निधनम, साम के पंचम भाग का नाम निधनम, उसमें चंद्रमा दृष्टि करे। ये राजन देव साम देवता सुप्रोतम, ये देवता दृष्टि करके, वायु देवता, आदित्य देवता, नक्षत्र देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता है। देवता सुप्रोतम, देवता की दृष्टि करके साम की उपासना, उसका फल आगे कहते हैं। स एवं एतत् राजनं देवता सुप्रोतम वेदयिता सामेव देवतानां सर्लोकतां साष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या ब्राह्मणा न निंदे तत् व्रतम। जो कोई एतत् राजनं साम देवता सुप्रोतम वेद, देवता में आश्रित राजन नाम का साम, सारे देवता में आश्रित साम, तो साम की उपासना देवता दृष्टि करे करे, ऐसे करे तो उसका फल होता है एता साम एव देवता नाम, इन देवताओं के लोकों को प्राप्त करता है। एता साम एव देवता नाम सलोकतां, प्रथमे सलोकतां, सलोकता का तो समान लोक में वास, देवता जिस लोक में रहते वही लोक प्राप्त करे, और दूसरा है साष्टी समान दृष्टि रिद्धि, उनका जैसे संपन्न है देवताओं की संपत्ति है ऐश्वर्य है, ऐसे संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करना साष्टीत्वम, और सायुज्य है समान देह इंद्रिय भाव, स्वयं देवता हो जाता है, देवता जिस लोक में रहते हैं वहां जाना सलोकता, और वहां जाने के बाद उनके समान रिद्धि प्राप्त हो जाए ऐश्वर्य तो साष्टी, स्वयं ही देवता बन जाए तो सायुज्य। ये अलग अलग जो फल कहा है उपासना के अनुरूप, जितने उपासना में सबसे अधिक उपासना करके तन्मय हो जाए तो सायुज्य समान देह इंद्रिय वाला होता है, स्वयं देव हो जाता है, थोड़े कम हो जाए तो समान ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, और थोड़े कम हो तो देवता लोक देवलोक में तो जाएगा, समान ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करेगा किन्तु सुख प्राप्त करेगा। यहां सायुज्यम गच्छति, श्रुति में वा शब्द नहीं, भगवान भाष्यकार कहते वा एक साथ सलोकता साष्टी सायुज्य तीनों नहीं, तीनों में से किसी एक को फल प्राप्त करेगा। सर्वम आयुर्ति ये सामान्य फल संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है जब जीवित रहता है, अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करता, 100 साल आयु शतायु वे पुरुष, शौचालय को प्राप्त करता है, जीव को जीवित उज्ज्वल जीवन होता है, प्रजा से पशु से कीर्ति से महान होता है। ब्राह्मणा न निंदे तद व्रतम, ब्राह्मण की निंदा नहीं करे उसका व्रत है। एतेवे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा, श्रुति कहती है एतेवे देवा प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष देवता है जो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण में देवत्व बुद्धि करे उनकी निंदा नहीं करे। किसी में कोई दोष है तो उसे दोष का फल उसको प्राप्त होगा, अपना अधिकार नहीं उसको दोष दिखा करके निंदा करने का। निंदा तो अपने में दुर्गुण है तो उसकी निंदा करके उसको हटाए, दूसरे की दोष देखे तो उसे दोष अपने में नहीं आए, हम में से दोष नहीं हो, दुर्गुण नहीं हो, इसके लिए सावधान हो, निंदा नहीं करे। ये जो उपासना करने वाले ब्राह्मण की निंदा नहीं करे, श्रुति कहते एते वे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मण, त्रयी विद्याहिंकार त्रय इमे लोका स प्रस्तावो अग्नि वायुरादित्य स उद्गीतो नक्षत्राणी वयांसी मरीचय स प्रतिहार सर्पा गंधर्वा पितर स्तनिधनम एत साम सर्वस्मिन् प्रोतम, यह एक साम सौ में आश्रित सारे सर्वात्मक साम है, ऐसे उपासना करें। त्रयी विद्या, त्रयी विद्या वेद तीन है, वैदिक जितने कर्म सौ अग्नि आदि कार्य है, विद्या हिंकार त्रयी विद्या को हिंकार, हिंकार में त्रय वेद त्रयी दृष्टि करे। त्रय इमे लोका, तीन लोक है भूर वसु सप्रस्ताव, साम के द्वितीय भाग प्रस्ताव में तीन लोक की दृष्टि करे, प्रथम भाग हिंकार में वेद त्रय दृष्टि करे, वेद त्रय साध्य कर्म उपासना सब, और द्वितीय भाग प्रस्ताव में ये लोक त्रय भूर भुवसह, भूर भुवसह जहां तीन लोक कहते हैं सारे ब्रह्मांड का अंतर्भाव हो जाता है, भू कहेंगे तो पृथ्वी लेना, पृथ्वी के नीचे सात पाताल उसमें अंतर्भूत हो जाता है, भूव अंतरिक्ष आकाश स्वर्ग हो गया, आगे स्व के आगे मह जन तप सत्याचार उनके भी ले लेना, तो सारा ब्रह्मांड है, ये दृष्टि करके द्वितीय भाग प्रस्ताविक उपासना। आगे तृतीय भाग का नाम उद्गीत, अग्निर वायु आदित्य स उद्गीत, उसमें अग्नि वायु आदित्य देव दृष्टि करके उपासना करे। चतुर्थ भाग है प्रतिहार, उसमें नक्षत्र वयांशी पक्षी है और मरीचि किरण आदि प्रकाश है, ऐसे दृष्टि करके उपासना करे। चतुर्थ हो गया, पंचमे निधनम, उसमें सर्प गंधर्व पितृलोक, सर्प भी गंधर्व लोक पितर ये निधनम, ऐसे दृष्टि करके उपासना करे। एतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतम, ये साम सौ में आश्रित है, क्यों सौ में, क्योंकि त्रय विद्या तीन लोक अग्निवायु आदित्य नक्षत्र वय मरीचि ये सर्प गंधर्व पितर ये सब को देख विचार करते हैं तो सर्वात्म सब कुछ है, सर्वात्मक है, ऐसे सर्वात्मक साम इसकी उपासना करे, उसका फल कहते हैं। स एवमेतत साम सर्वस्मिन् प्रोतम वेद सर्वम हवति, जो ये साम है सौ में आश्रित है उसकी उपासना करता है वो सर्व हो जाता है, सर्व हो जाता है मतलब जैसे परमात्मा सर्वात्मक है ये भी सर्वात्मक हो जाता है, सर्वेश्वर हो जाता है। तदेश श्लोको यानि पंचधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न जाय परमन्यदस्ति, इसको कहने के लिए मंत्र है। यानी पंचधा त्रीणि त्रीणि, पंचधा है साम के पांच भाग है, प्रत्येक भाग में तीन तीन करके कहे गए, त्रीणि त्रीणि तेभ्य न जाय, पंचधा पंच प्रकार है, पांच भाग है, और त्रय विद्या त्रय लोक तीन देव है, नक्षत्र व्यांशी तीन, सर्पागंधर पितर तीन, तीन तीन होकर के जो पांच भाग हो गए, इसमें देखे पूर्व मंत्र में सारे सब कुछ आ गए। तेभ्य जाय परम अन्यत नास्ति, उनसे उत्कृष्ट कोई अन्य वस्तु उत्कृष्ट से भिन्न कुछ भी नहीं है, सर्वात्मक है साम, सब कुछ उसमें अंतर्भूत हो गए। यस तद वेद स वेद सर्वम सर्वादिश बलिमस्मे हरंती, सर्वमस्मित उपासित तद व्रतम तद व्रतम। जो इसी उपासना करता है तीन तीन करके सारे पांच साम में सर्वात्मक ब्रह्म स्वरूप है, सस वेद सर्वम सब को जान लेता है, सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वादिशो बलि अस्मि हरंती, सारे दिशा दिशा क्या देंगे, दिश में स्थित सारे दिशा में स्थित जितने सब भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं। सर्व अस्मि हरंती सर्वम अस्मित उपासित, सर्वात्मक मैं हूं ऐसे साम की उपासना करें। वो साम सर्वात्मक ऐसे साम की उपासना प्रारंभ से एक एक अवयव एक एक भाग में एक एक दृष्टि अलग अलग उपासना करते करते अंत में वही साम सर्वात्मक है। सारे सर्वात्मक दृष्टि कर उपासना करते करते अंत में अहंग्रह उपासना, व्यष्टि प्रतीक उपासना, छोटी छोटी प्रस्ती के उपासना। प्रतीक में अहंग्रह उपासना नहीं होती है, जो प्रतीक उपासना करते है शालग्राम विष्णु बुद्धि करते है वही मैं हूं इस उपासना नहीं होती है। प्रतीक में अहंग्रह उपासना नहीं होती, न प्रतीक न ही सह ब्रह्म सूत्र में से व्यास जी ने कहा प्रतीक में कोई अहम बुद्धि करके उपासना नहीं करता है, नहीं होता है। और प्रतीक उपासना की अपेक्षा अहंग्र उपासना श्रेष्ठ है। जो अहंग्र उपासना करते हैं ब्रह्मलोक जाते हैं, प्रतीक उपासना करने वाले ब्रह्मलोक नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। ब्रह्म सूत्र में वादरायण व्यास जी ने कहा अप्रतिकालंबना नएति वादरायण, ऐसे ब्रह्म सूत्र है। अप्रतिकालंबना नएति प्रतीक है आलंबन जिनका, वो प्रतीकालंबना प्रतीकों को आलंबन कर जो उपासना करते हैं वो के प्रतीकालंबना, उनसे भिन्न अप्रतिकालंबना जो अहंग्र उपासना करते हैं उनको लेता है ब्रह्मलोक नएति वादरायण आचार्य कहते हैं। प्रतीक उपासना करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते हैं। प्रतीक उपासना से प्रारंभ करके अंत में प्रतीक परिचय बुद्धि छोड़ करके फिर ये माया विशिष्ट ईश्वर परमात्मा का चिंतन, उसके बाद माया अतीत शुद्ध चिन्ह मात्र ऐसे चिंतन करके अहम अस्मि चिंतन करे तो अहंग्र उपासना हो जाए। अहंग्र उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और प्रतीक उपासना से नहीं। इसी प्रकार यहां भी अलग अलग उपासना पहले तो ओम इति तद अक्षरम उद्गीतम उपासित प्रारंभ किया था, अलग अलग बुद्धि से शाम के अवयव दृष्टि से करके फिर उद्गीत अक्षर को लेकर के विभिन्न प्रकार उपासना करके अभी सारे तीन तीन करके उसमें चिंतन करके अंत में आया लोक विद्या वेद भी है लोक भी है देवता भी है ऐसे करके शाम सर्वात्मक है। शाम साधु कहा गया था पहले साधु शाम असाधु शाम सर्वात्मक अंत में सर्वम अस्मिति उपासित सर्वात्मक ब्रह्म है अहम अस्मि ऐसे उपासना करे। सर्वम अस्मि उपासना करने से सर्वात्मक हो जाता है अंत में सर्वम अस्मि फिर सर्वात्मक परब्रह्म शब्द से कहो सर्वात्मक कहो चिन्मात्र कहो कोई नाम में आग्रह नहीं सर्वात्मक ब्रह्म अहम अस्मि। अहम अस्मि ये उपासना है वेदांत श्रवण करने के बाद युक्ति से मनन करना है। युक्ति से मनन करने पर संशय निवृत्त हो जाए तब निधिध्यासन होता है। संशय दो प्रकार होता है, एक प्रमाण संशय और एक प्रमेय संशय। प्रमाण संशय शास्त्र है प्रमाण परमात्मा के विषय में अलौकिक जो लौकिक पदार्थ है चक्षुरादि प्रमाण से हम देख लेते हैं, कोई पदार्थ मीठा खट्टा खा करके देख लेते हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि चक्षुरादि प्रमाण से हम जान लेते हैं, किन्तु जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है धर्म अधर्म स्वर्ग आदि नरक आदि वहां शास्त्र ही प्रमाण। तो परमात्मा के संबंध में शास्त्र ही प्रमाण वेद शास्त्र प्रमाण है। वेद प्रमाण होने पर भी वेद में जब देखते हैं ज्ञान कांड के अपेक्षा कर्म कांड बहुत बड़ा है, उपासना कांड भी है, उसमें कहीं कहीं तो द्वैत ही ठीक लगता है, कहीं कहीं अद्वैत ठीक लगता है, कहीं कहीं तो शून्य रहता नैव किंचन आसन कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं था मतलब शून्य था, असत विदम अग्रासित कहीं आ गया पहले असत ही था, इसको लेकर कोई शून्यवादी कहते पहले तुच्छ शून्य था। वेद में इस प्रकार अलग अलग मंत्र में अलग अलग प्रकार कहीं कहा गया, कहीं प्राण से सारे जगत की उत्पत्ति, कहीं आकाश से सारे जगत की उत्पत्ति और ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति। ब्रह्म से उत्पत्ति तो बहुत स्थान में कही गई, इसमें आया पहले कहीं आकाश से भी उत्पत्ति कही गई, कहें प्राण से उत्पत्ति कही गई, तो ये क्या है उत्पत्ति? प्राण से है, आकाश है, ब्रह्म से, और सांख्य लोग कहेंगे प्रधान से उत्पत्ति, तार्किक लोग कहते परमाणु से जगत बन जाएगा, ईश्वर अलग है निमित्त कारण उपादान कारण परमाणु, ऐसे ही उत्पत्ति निमित्त कारण अलग उपादान कारण अलग। लोक में दिखता है कुलाल घट बनाता है, कुलाल होता है निमित्त कारण, मिट्टी है उपादान कारण, और वेदांत में क्या है वही एक ही ब्रह्म अद्वितीय, जो निमित्त कारण भी उपादान कारण भी, जो ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय है वो कैसे जगत का कारण होगा? निष्क्रिय अद्वितीय ब्रह्म कोई गुण नहीं, उससे निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म से इतने बड़े जगत कैसे उत्पन्न हुआ? फिर कहते माया से, माया फिर कहां से आई? अद्वितीय ब्रह्म है तो माया क्या चीज है? इसके ऊपर ऐसे विचार करने पर शास्त्र में संशय हो जाते हैं, और संशय स्वाभाविक है, अलग अलग मत भी चल रहा है, कोई किसको कहता है बड़ा है, कोई किसको कहता है, तो शास्त्र का तात्पर्य किसमें है? वास्तव ब्रह्म अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ अद्वितीय ब्रह्म कोई निर्गुण निष्क्रिय अद्वितीय ब्रह्म है अथवा नहीं, ये संशय हो जाता है। उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश कार्तिकेय कितने देवता इंद्र वरुण आदि हनुमान आदि कितने सब है, विष्णु भी राम कृष्ण आदि अवतार अलग अलग, सब में से श्रेष्ठ कौन परमात्मा है? ये साधक भी इसमें भी पहले द्वंद्व में बड़े संग्राम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या करना है, एक देवता देखते दूसरे देवता बड़ा, शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई किसी पुराण पढ़ो उनको सबसे बड़ा कह देते हैं, अगर भागवत तो पढ़ो तो कृष्णा बड़ा हो जाए, शिव पुराण पढ़ो शिव बड़ा है, सूर्य पुराण एक होता आदित्य पुराण वहां सूर्य भगवान सबसे बड़ा है, गौरव पुराण पढ़ो देवी भागवत पढ़ो तो देवी सबसे बड़ी, देवी विष्णु को उपदेश करती है, देवी भागवत में देवी उपदेश करती विष्णु को, तो इसमें कौन बड़ा है? सबसे बड़े की उपासना करना सब चाहते हैं। और द्वैत पारमार्थिक है या अद्वैत? द्वैतवादी बहुत ही, जितने सब साक्षी है दर्शन में, एक उत्तर मीमांसा का छोड़ करके पूर्व मीमांसा जैमिनी महर्षि का, उसके पहले योग दर्शन सांख्य न्याय वैशेषिक, पांच दर्शन तो द्वैतवाद ही है। एक उत्तर मीमांसा है वेदांत, उत्तर मीमांसा वेदांत में भी एक शांकर मत को छोड़ करके बाकी जितने मत है द्वैत अद्वैत शुद्ध अद्वैत केवल अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत शब्द शास्त्र में आए तो अद्वैत को तो रखते ही, अद्वैत साधु कुछ जोड़ देते हैं, द्वैत अद्वैत शुद्ध अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत क्या कहेंगे? अद्वितीय ब्रह्म तो परमात्मा एक है किन्तु वो विशिष्ट है, जड़ चेतन विशिष्ट ब्रह्म एक है, ब्रह्म का अवयव जड़ भी उसका अवयव चेतन भी उसका अवयव, जड़ चेतन अवयव वाला ब्रह्म है कि जैसे एक लड्डू बना दिया उसे बूंदी भी रख दिया कुछ अन्य पदार्थ मिला दिया लड्डू एक हो गया, उसके अवयव अलग अलग हुआ, इसी प्रकार सारे पदार्थ मिल करेगा एक ब्रह्म सावयव मानते हैं, अब तार्किक लोग कहते सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा, जो सावयव अवयव वाला है अनित्यम सावयवत्वाद घटवत, वो कहते सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा, इसमें अलग अलग मत होने के कारण और आचार्य के द्वारा प्रणीत दर्शन, कोई सामान्य व्यक्ति कोई कुछ कहता है कथा प्रवचन करने वाले कुछ बोल दिया उसको हम माने नहीं माने अलग बात, किन्तु ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीत कपिल सांख्य है, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, और कणाद है वैशेषिक मत है, गौतम के न्याय है, कणाद से महर्षि तो खेत में सब शस्य अनाज काट कर ले गए, धान गेहूं काट कर ले गए, उसमें कोई धान गेहूं को गिरा होगा मुगा उसको चुन चुन कर ला करके उसको रख कर उसको खाकर रहना, ये कितने महर्षि है, तो ये सब महर्षियों का मत है, सांख्य कपिल के सांख्य ज्ञानी कपिल ज्ञान अवतार पतंजलि महर्षि है, ये योग मत है, इनके मत में इतने अलग अलग भेद है तो किसको मानेंगे? स्वाभाविक संशय होता है, सब द्वैतवाद है, और एक अद्वैतवाद है तो उसमें बहुत मतभेद है, अलग अलग मतभेद है, ये जो संशय होता है उसको कहते प्रमाण संशय, शास्त्र तो प्रमाण है किन्तु उसको देखते हैं तो विभिन्न प्रकार लगता है, कहीं कुछ लगता है, ये उपनिषद ब्रह्म विद्या है, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, अभी उपनिषद है चल रही किन्तु अभी तक सब उपासना चल रही, कहीं ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म नहीं अभी आया, सर्व ब्रह्म अस्मिति उपासित, नहीं तो अद्वितीय ब्रह्म तो मैं ही ब्रह्म किन्तु इतने से उपासना चल रही, अब ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए साधक आया गुरु के पास उसको उपासना करने के लगा देते हैं, यदि ब्रह्म अद्वितीय सत्य है सीधा ही बता दो तुम ब्रह्म हो, इतने उपासना क्यों कराते हैं, ये सब प्रमाण में संशय होता है। अब प्रमाण संशय की निवृत्ति होती शास्त्र के श्रवण करने पर आचार्य के मुख से। आचार्य मुख से वेदांत उपनिषद श्रवण करे, प्रारंभ से अंत तक पढ़े, विचार करे। विचार करने के लिए कुछ लिंग ज्ञापक है, किसमें तात्पर्य है ये समझना। उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय के लिए ज्ञापक है, किससे आरंभ किया गया, अंत में किसमें उपसंहार किया गया। उपक्रम उपसंहार एक हो, उपक्रम उपसंहार अभ्यास जिसको बार बार, जैसे षष्ठ अध्याय में आएगा तत्वमसी को बार बार नौ बार कहा गया, ये अभ्यास कहते बार बार कहना। अपूर्वता नहीं ना देवा में अपूर्वन देवता लोग प्राप्त नहीं करते, इंद्र का विषय नहीं है। अपूर्वता फल भी कहेंगे, अर्थवाद स्तुति है, उपपत्ति युक्ति बताएंगे, ये सब मिल करके तात्पर्य निर्णय होता है। शास्त्र के तात्पर्य निर्णय करना ऐसे भाष्य आदि के आचार्य के भाष्य आचार्य मुख से श्रवण नहीं करेंगे तो निर्णय करना बड़ा कठिन होते हैं। इसीलिए बादरायणी ने, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा दर्शन बनाया। उपनिषद के प्राण से उत्पत्ति, आकाश से उत्पत्ति, ब्रह्म से उत्पत्ति, तो जगत से जगत की उत्पत्ति किससे मानेंगे। तो इसमें आया आकाश से उत्पत्ति जहां कही गई वो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, प्राण से उत्पत्ति जहां कही गई वहां भी प्राण का अर्थ ब्रह्म बताया था आकाश स्थलिंगात ब्रह्म सूत्र है। अतएव प्राण अतएव का ऐसे ब्रह्म का लिंग ज्ञापक कौन से, प्राण भी ब्रह्म है। प्राण शब्द कह दिया, आकाश शब्द कह दिया, तो भी ब्रह्म अर्थ लेना। ऐसे उसके संशय निवृत्ति के लिए ब्रह्म सूत्र में विचार आया, जिससे शास्त्र का तात्पर्य क्या है ये निश्चय हो जाता है। वही श्रवण करना पड़ता है। श्रवण करने से वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानत ब्रह्मात्मनिव तात्पर्यम इति भी श्रवणम भवेत। श्रवण क्या है, वेदांत श्रवण, श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ कथा सुनते हैं, खुश होते हैं, नाम गान करते, कीर्तन करते, ये श्रवण नहीं। वो श्रवण अलग है, जो आत्मा बारे द्रष्टव्य कह करके श्रोतव्यो मंतव्यो निधितव्य, जो श्रवण को ज्ञान का साधन कहा गया वो श्रवण क्या है। लोक में कोई गाली गुलज करता तो भी श्रवण तो होता है, सुनना ही तो श्रवण, श्रवण का तो सुनना। और श्रवण इंद्रिय कहते जिसे सुना जाता है, सुनना। कोई कुछ कहता है तो सुनते, मेघ गर्जन होता है तो सुनते, समुद्र गर्जन भी हम सुनते, ये श्रवण को नहीं कहते ज्ञान का साधन, वेदांत श्रवण। अरे वेदांत श्रवण का अर्थ है वेदांत कोई बोलता है उसको सुन लिया, मंत्र कोई पढ़ता सुन लिया, ये श्रवण में नहीं होता है। श्रवण करा अर्थ नहीं समझा तो श्रवण क्या हुआ, अर्थ बताया कुछ को बताया, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं क्या प्राण से सबकी उत्पत्ति, कहीं कहते आकाश से उत्पत्ति, कहीं कहते अद्वितीय ब्रह्म था, कहीं कहते कुछ नहीं था पर असत था, कहीं कहे सत था, ये सब कहने से ये श्रवण भी क्या हुआ। कहीं कुछ कहते, कहीं कुछ कहते, सुन तो लिया। एक स्थान में कहते पहले कुछ भी नहीं था, तुच्छ असत था। एक स्थान में कहले अद्वितीय ब्रह्म था। एक स्थान में कहे आकाश से जगत की उत्पत्ति हुई, कहीं कहते प्राण से उत्पत्ति हुई, ये सब श्रवण हुआ। क्या निर्णय करना, तो क्या कहना चाहते हैं। इसे श्रवण का अर्थ नहीं खाली सुनना, ये श्रवण करते करते तात्पर्य निर्धारण करना, निश्चय करना। क्या तात्पर्य है, वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानत, संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य आदि में मध्य में और अवसान अंत में। तात्पर्य किसमें, ब्रह्मात्मनेव तात्पर्य, ब्रह्मात्मा में जीव ब्रह्म की एकता में ही तात्पर्य है वेदांतों का। इति धी श्रवणम भवेत, इस निश्चय को श्रवण कहते। श्रवण करते करते ऐसा निश्चय हो गया सारे वेदांत उपनिषद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, ये दृढ़ निश्चय हो गया तो श्रवण हो गया। जब तक ये शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से भिन्न मिथ्या सब है, ऐसा निश्चय नहीं हुआ तब तक श्रवण नहीं हुआ। ये श्रवण करके निर्णय करना, खाली सुन लिया कुछ कहते अपने भजन कर लिया बोल दिया, क्या कहते कभी कुछ कहते कभी कुछ सुन लिया, नहीं सुन के तात्पर्य निर्णय हो, निश्चय निर्णय का अर्थ नहीं। वो कहते अद्वितीय ब्रह्म, हम अद्वितीय ब्रह्म नहीं, अपने आप निर्णय करना पड़ता है। इसे देख करके आगे पीछे विचार करके आचार्य के चरण में बैठ करके श्रवण करके फिर प्रश्न उत्तर करके शंका समाधान करके पूरा निर्णय हो जाए अद्वितीय ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मसूत्र का श्रवण भी आवश्यक है। जहां जहां परस्पर विरोध दिखता है उसका समाधान करते हैं। ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय में आगम प्रकरण हो गया, द्वितीय अध्याय में अविरोध, अद्वितीय ब्रह्म कहेंगे। सब दर्शन का विरोध होता है, सब दर्शन ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीत है। सांख्य योग और न्याय वैशेषिक ये सब मत का विरोध होता है। फिर ये विरोध होगा तो इसको हम कैसे ठीक मानेंगे, इसी विरोध का समाधान करेंगे। इसलिए ब्रह्मसूत्र में अविरोध अध्याय में सारे दर्शन का विरोध कैसे नहीं और अन्य अन्य मत कैसे उसमें क्या दोष है ये स्पष्ट करेंगे, तब ये प्रमाण में निश्चय बुद्धि होती है। अच्छा, निश्चय हो गया शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, ये हो गया श्रवण। श्रवण करने के बाद मनन करने की क्या आवश्यकता है, एक प्रमाण संशय के बाद दूसरा संशय है प्रमेय संशय। प्रमेय इसका ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्मात्मनि तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता। ब्रह्म कैसा है, अद्वितीय, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म अद्वितीय। उसी ब्रह्म के साथ जीव की एकता में हुई अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म। आप अद्वितीय ब्रह्म है अर्थात आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, आपका कोई अवयव नहीं, आपसे विजातीय भी कोई नहीं, सजातीय भी कोई नहीं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, एक ब्रह्म। ये कैसे संभव हो सकता है, पहले तो हमारे सब हाथ पैर अवयव है, निरवयव कैसे हम होंगे, हम परिच्छिन्न है अपरिच्छिन्न ब्रह्म हम कैसे है, और हमसे भिन्न कैसे नहीं चला, हम ब्रह्म है कोई बात नहीं, मेरे से भिन्न इतने को बैठे वो क्या, फिर आप ब्रह्म है कोई सच है, मैं ब्रह्म, बाकी सब जो बैठे हुए क्या है, बाकी सब क्या जड़े है क्या, बाकी ये चेतन है तो अद्वितीय कैसे हुआ। ब्रह्म कौन सा ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय का था उससे भिन्न कुछ नहीं, बहुत मानकर सोचकर चलो हम ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म कितने हो जाएंगे, अनंत जीव बैठे सब ब्रह्म कहेंगे, अनंत ब्रह्म होगी, ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा। अद्वितीय हो जाने के लिए ये बड़ा कठिन है, एक ब्रह्म से बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं चेतन तो बिना नहीं, जड़ भी बिना नहीं, ये सारे जो प्रपंच दिखता है ब्रह्म तो किसने नहीं देखा है, वो सत्य है पारमार्थिक, ये सब जो दिखता है मिथ्या है। इतने बड़े प्रपंच जिसमें सारे व्यवहार करोड़ करोड़ रुपया खर्च करे, कितने कितने बड़े बड़े मकान और इतने पहाड़ पर्वत देखें तो उसको सोचने पर ना बुद्धि काम नहीं करती, ये कैसे किसने बनाया, इतने बड़े बड़े पहाड़, शुद्ध निर्गुण ब्रह्म है, ये बड़े बड़े पहाड़ किसने बनाए, कहां से सामग्री लाई, और आगे देखो केदारनाथ हो बद्रीनाथ जाओ, वहां एक बड़े बड़े पर्वत लगता है, एक ही पत्थर है, कोई बीच में जॉइंट में नहीं, ये मकान में तो सब सीमेंट ईट पत्थर दे करके बनाते हैं, वहां देखो पर्वत नीचे से ऊपर एक ही पत्थर जैसा लगता है, कहीं फटावाल जैसे लगे या कि एक ही पत्थर, एक ही पत्थर कहां से लाए और कैसे बनाए, किसने बनाए, कैसे बनेगा, वहां कोई बुद्धि काम नहीं, वैज्ञानिक लोग विचार कर उसको निर्णय कर पड़ेगा कैसे बन जाएगा, कैसे विचार करेंगे, इतने बड़े कहां, ये क्रेन आदि कहां काम करेगा, तो वो पत्थर का थोड़ा टुकड़ा गिर जाएगा तो कितने सब को कहां खत्म कर देता है, तो ये तो मिथ्या है, ये कैसे निश्चय होगा, इसके लिए मनन की आवश्यकता। मनन युक्तिया संभावितत्वानुसंधानम मनन अभेद, युक्ति से ये जो संभव है मिथ्या संभव है, अभी निर्णय नहीं हुआ, ये हो सकता है मिथ्या, स्वप्न दृष्टान्त को देख करके सपने भी इसे पर्वत समुद्र मकान सब देखने पर भी मिथ्या है, जगने के बाद नहीं रहता है, इसी प्रकार ये भी संभव है, बार बार विचार करना पड़ता है, बहुत तर्क पंचदश आदि ग्रंथ में तर्क सब बताए, प्रक्रिया किस प्रक्रिया से चिंतन करने से मिथ्या तो निश्चय होगा, वो प्रक्रिया को नहीं समझ करके कोई अष्टावक्र गीता और योग वासिष्ठ आदि कुछ कुछ श्रवण करने पर सब अद्वितीय ब्रह्म, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बात सुनने पर बहुत अच्छा लगा, फिर हमको करना क्या पड़ेगा, ब्रह्म अद्वितीय और कुछ नहीं, किंतु हम तो हमको जो दुख मिलता है दुख तो मिलता है, फिर हमको क्या करना, हमको क्या मिला, अष्टावक्र गीता में बिल्कुल बड़े सुंदर लगता है, कुछ है ही नहीं, अयम एव ही ते बंध समाधि मनु तिष्ठसि, जनक को कहते तुम्हारा तो यही बंधन, तो समाधि कर रहे हो ध्यान कर रहे हो योगाभ्यास कर, यही तुम्हारा बंधन है, किसी स्थिति को जानने पर उसको कहते तुम्हारा यही बंधन जो तुम समाधि अनुष्ठान कर रहे हो, ज्ञान होकर के बहुत पहुंच गए, तुम ही ब्रह्म हो, तो समाधि करके किसका दर्शन क्या करना प्राप्त करना चाहते हो, किस अवस्था में कहते हैं। और शुरू से कोई बता देते हैं, ऐसे भी सुना कोई शुरू से कहेंगे तुम्हारा तो यही बंधन है, जो मंत्र जब करते हो ना ही तुम्हारा बंधन का कारण, जो मंदिर में जाते प्रणाम करते द्वैत चिंतन करते यही तुम्हारा बंधन का कारण। और क्या करना, अद्वैत तुम ब्रह्म है बस मस्त हो जाओ, मस्त कर क्या करेंगे, सुन लिया सब ब्रह्म कुछ नहीं नाना थी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तुम ब्रह्म हो, बड़े बड़ा अच्छा है। फिर और करना क्या है, दुख तो जैसे कोई से रहा, इसलिए प्रक्रिया से आगे बढ़ना पड़ता है। प्रक्रिया से नहीं जाकर के जो मूल ऊपर दर्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि इसे पुस्तक लिखते हैं पूरा वेदांत के अंतिम दर्शन को, और उसके ऊपर भाषण भी करते हैं, इसे लोगों का नाम प्रसिद्ध है, कोई इन सब कहते हैं कि सुपुरतावधि क्या मूर्ति, कोई पुस्तक पढ़ती क्या मूर्ति, यज्ञ मूर्ति, हाँ जैसे रजनी से कहता जो बोलता था वेदांत का अंतिम स्थित, वो सब बोलने पर बड़ा अच्छा लगेगा, किन्तु आपको कहाँ कैसे पहुंचना, आपको क्या करना, ये जानने के लिए शास्त्र में से एक सीढ़ी सोपान बनेगी, और सोपान छोड़ करके ऊपर सीधा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, किन्तु हम क्या करेंगे, हम तो जहां नीचे गिरे हुए कैसे जाएंगे, इसलिए सीढ़ी में जाना पड़ता है। मनन करके पहले संभव हो सकता है ये विचार करना है, युक्ति उसके लिए आवश्यक है, बहुत युक्ति प्रक्रिया शास्त्र में है। घटाकाश मटाकाश जलाकाश मेघाकाश ये प्रक्रिया समझे, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का भेद समझे, लक्ष्यार्थ क्या वाच्यार्थ क्या दोनों भेद नहीं समझ करके मैं ब्रह्म रटता रहे कुछ नहीं होगा, कितने करोड़ कल्प चल जाए कुछ नहीं होगा, इसलिए वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भेद समझने के लिए प्रक्रिया है। जीव का क्या स्वरूप है, बुद्धि क्या है, मैं कौन हूं, ये सब विभिन्न प्रकार संशय निवृत्ति होने के लिए मनन, मनन से जो संभावना हो सके कि जीव ब्रह्म एक संभव है, तभी तो अहम ब्रह्म चिंतन हो सकता है। जब असंभव है कैसे हो सकता है, कोई कहे तुम चिंतन करो मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं चिंतन करो, वह चिंतन बोलेगा मैं हाथी हूं किन्तु इधर सोचे हंसता रहेगा मैं क्या हाथी हूं, फिर कहे नहीं चिंतन करो तुम राष्ट्रपति हो, अब वो भी अच्छा है हाथी के अपेक्षा मैं राष्ट्रपति हूं, और खुशी है मैं राष्ट्रपति हूँ, भी सोचते सोचते फिर सोचेगा अपने आप को मूर्ख कहेगा मैं कहा राष्ट्रपति हूँ, जितने चिंतन से क्या होता है, इसी प्रकार कहते मैं ब्रह्म हूं, कोई को रटते मैं ब्रह्म हूं, और कोई कोई मंत्र दे देते हैं। एक बहुत 70-75 साल की उम्र की बूढ़ी, उनको गुरु मंत्र दे दिया सोहम, सोहम था वही ब्रह्म मैं हूं, वो रटती है, वो क्या है, ये भगवान का नाम है, जप करती है, इसे माला में जप करते भगवान का नाम जप करते, वो सोच लिया सोहम भी भगवान का नाम है, गुरु मंत्र दिया है, उसका अर्थ क्या पता नहीं, सोहम मतलब भगवान का नाम है, सोहम क्या स अहम, वह मैं हूं, वह परमात्मा मैं हूं सोहम का अर्थ, किंतु ये मंत्र देते जो कुछ नहीं समझते उसको बताते मंत्र जप करो सोहम नहीं तो शिवम, ये जप करने से क्या होगा, इसका अर्थ भी कुछ पता नहीं, खाली जप करने से क्या होगा, इसलिए मनन संभव हो आगे निधिध्यासन होगा। शुरू से सिद्धांत खाली तुम ब्रह्म इतने कहने से कुछ नहीं होता है, इसलिए श्रवण करके निश्चय करना है, तात्पर्य निर्णय करना, फिर मनन होगा सब निधिध्यासन होगा। ये वेदांत विचार तो उत्कृष्ट है, किन्तु ये श्रवण मनन निधिध्यासन जो नहीं कर पाते हैं, उनको यदि अहंग्र उपासना करने के लिए कोई उपदेश दिया, और यदि अहंग्र उपासना कर सके, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं, सर्वात्मक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, उससे बिना कुछ नहीं, ये भी बहुत पूर्व पुण्य से यदि किसको गुरु वाक्य में विश्वास हो जाए कि अनुभूते रभावेपि ब्रह्मास्मि इत्येव चिंत्यताम्, अनुभव नहीं होने पर भी अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे जो चिंतन करे तो कोई दोष नहीं है, अनुभव नहीं हुआ किन्तु ऐसे चिंतन यदि करे तो दोष नहीं, किन्तु उसे लाभ होता है, ये अहंग्रह उपासना, तो भी बिल्कुल नहीं समझ कर नहीं होता, थोड़ा समझना होता है, शास्त्र श्रवण किया ऐसे परिपूर्ण अहंग्रह उपासना करने के लिए ये सब प्रक्रिया बताते हैं। छोटे छोटे से इस उपासना अलग दृष्टि से उपासना करो, शाम के अवय में लोक दृष्टि करो, वेद दृष्टि करो, आदित्यादि दृष्टि करो, पंचविध आया लोक इस लोक पर लोक दृष्टि करो, ब्रह्मांड दृष्टि करो, ये सर्वात्म के सामने ये आदित्य है, ब्रह्मांड है, सर्वात्मक हो, सम है, साधु है, ऐसे करते करते वो सर्वात्मक है, वो सर्वात्मक साम मैं हूं, ऐसे मैं ही सर्वात्मक हूं, ऐसे करने के लिए अहंग्र उपासना करने के लिए प्रक्रिया है। ऐसे जो करेगा उपासना ऐसे करते करते वो अहंग्र उपासना भी कर सकता है। ये थोड़े कुछ ऐसे दृष्टि करके उपासना नहीं करे, प्रतीक उपासना भी जिसने नहीं की उसको अहंग्र उपासना कैसे कर सकता है। इसलिए प्रतीक उपासना भी आवश्यक है। ये उपासना कितने जन्म में भक्ति उपासना करने पर थोड़ा अंतगुण शुद्ध होता है तो आगे इसे सर्वात्मक वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं, सबको मालूम है, रटे है, सबको जानते हैं, किंतु सर्वत्र वासुदेव बुद्धि हो जाए, यदि सब परमात्मा से बुद्धि हो जाए तो भक्ति दृढ़ होगी। एक शब्द से कहना तो सरल है, सब परमात्मा से बुद्धि हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो फिर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहीं द्वेष होता है, कहीं थोड़ा सा भी द्वेष कभी आ गया, इसका अर्थ उसमें परमात्मा बुद्धि है ही नहीं। तो है इसे कहना बड़े बड़े कठिन है, ये परमात्मा बुद्धि इसे सर्वात्मक ब्रह्म की बुद्धि दृढ़ निश्चय होने के लिए प्रतीक उपासना से प्रारंभ करते हैं। एक कहीं भी योग सूत्र में देश बंध चित्त से धारणा, किसी देवस्य में मन को लगाओ, पहले थोड़े मन लगाओ, धारणा करो, आगे ध्यान होगा। धारणा एक स्थान में मन लगाने के सामर्थ्य नहीं है, मैं ब्रह्म कौन चिंतन करेगा। थोड़े एक स्थान में लगाओ, उसे ताटक भी करते हैं, कहीं भी मन लगाओ एक स्थान में, उसके बाद बाहर लगाओ, फिर अंदर लगाओ, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, फिर लगातार चिंतन करो, ध्यान होगा। ये सब करने पर अंतकोण शुद्ध होता है, तब आगे अहंग्र उपासना भी कोई कर सकता है, वेदांत सबने भी कर सकता है। तो अहंग्र उपासना करने के लिए ये अंत में आया, सर्वम अस्मीति उपासित तद्व्रतम तद्व्रतम, उसका ये व्रत हो गया, अहम अस्मि सर्वम अस्मि, सर्वात्मक मैं हूं, इसे चिंतन करें। फिर शाम उपासना कह करके वो गान विशेष आदि उपासना करने के लिए अभी फिर उद्गाता ऐसे उपासना करे, अलग अलग उपासना कहते, शाम के अलग अलग शब्द है, ऐसे उपासना करे। विनर्दि सामनो वृणे वसव्यमित अग्निरुद्गीथो अनिरुक्त प्रजापते निरुक्त सोमस्य मृदुसक्षण वायो श्लक्षण बलवदेन्द्रस्य क्रौंचं बृहस्पतेर अपध्वान्त वरुणस्य तान सर्वानेव उपसेवेत वारुणं तेव वर्जयेत। विनर्दि सामन वृणे, साम के विनर्दि विशेष नर्द स्वर विशेष है, वृषभ जैसे शब्द करते ऐसे शाम का है, ऐसे शब्द गान को मैं वर्ण करता हूँ। पशव्यम ये पशुओं के लिए था, इसे शाम ओ पशव्यम इति अग्निर उद्गीत, ये तो हो गया शाम का, पशव्यम अग्निर उद्गीत, अग्नि के उद्गीत है, अग्नि के है। निरुक्त प्रजापति है, प्रजापति का शाम निरुक्त है, स्पष्ट है, निरुक्त अनिरुक्त 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 प्रजापति है, अवग्रह अनिरुक्त प्रजापति, प्रजापति का समय अनिरुक्त स्पष्ट नहीं होता है, निरुक्त नहीं, निरुक्त होता है स्पष्ट, अनिरुक्त होता है अस्पष्ट, प्रजापति के जैसा अस्पष्ट है। आगे निरुक्त सोमस्य, सोम देवता का, सोम देवता चंद्र का, उसके साम निरुक्त है। वायु का जो सामे मृदु श्लक्षणम, मृदु तो होता है कोमल, अश्लक्षण होता है मधुर, ऐसे साम है वायु देवता का। श्लक्षण बलवद इंद्रस्य, बल वाले इंद्र के जो सामे श्लक्षण मधुर है। क्रौंचम बृहस्पति, बृहस्पति देवता संबंधी जो सामे क्रौंचम, क्रौंच के पक्षी होता है, उसके शब्द के समान, क्रौंच पक्षी के समान है। अपध्वान्तम वरुणस्य, वरुण देवता के जो साम है अपध्वान्तम, अपध्वान्त का अर्थ क्या, कांसे के बर्तन फट जाने पर उसको शब्द करो, जैसे शब्द होता है, जो बर्तन फट जाता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, मालूम है, वो उसमें कली का वास होता है, बर्तन फट गया तो उसको उपयोग नहीं करते, घर में रखना नहीं चाहिए। कांसे के बर्तन जब फट गया उसको शब्द करो, जैसे शब्द होता है उसको कहते अपध्वान्तम, भिन्न कांसे सम। तान सर्वान उपसेवेत वारणं तेव वर्जयेत, ये अलग प्रकार जो साम है सबका चिंतन करे, प्रयोग करे, किंतु एक जो वरुण का है साम अपध्वान्तम, भिन्न कांस वर्तन के फट गए पांच वर्तन का शब्द जैसे, उसको वर्जयेत, उसका वर्जन करके अन्य साम का चिंतन करे। अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीति आगायेत, स्वधाम पितृभ्य आशा मनुष्येभ्य स्त्रिनोदकं पशुभ्य स्वर्गं लोकं यजमानाय अन्नम आत्मन आगायानीति एतानि मनसा ध्यायन अप्रमतस्तु वीत। देवता के लिए अमृतत्व में गान करके सिद्ध करता हूं, आगायानी साधयामी इति आगायत, ऐसा गान करे। स्वधाम पितृभ्य, पिताओं के लिए स्वधा, जब पितरों को देते हैं, देवताओं को देते थे कहते स्वाहा, पितृ को देते थे स्वाहा नहीं कहते, वहां कहते स्वधा, स्वधा कह के पितृभ्य। आशा मनुष्यभ्य, मनुष्य के लिए आशा प्रार्थना, जो चाहते प्रार्थित फल उनको दे। तृणोदकम पशुभ्य, और पशु के लिए तृण घास और जल, तृणोदकम। स्वर्गम लोकम यजमानाय, ऋतु के से चिंतन करता है यजमान को स्वर्ग प्राप्त हो। अन्नम आत्मने आगायनी, अपने लिए अन्न प्राप्त हो आत्मने, केवल अन्न का रोटी चावल भात नहीं, खाद्य जितने आवश्यक प्राप्त हो जाए, आवश्यक है सबके लिए आवश्यक है। और जो केवल कर्म करते वेद पढ़ते उनको अन्न आवश्यक है, घृत आदि भी आवश्यक है। इसी में भी मंत्र में भी कर्म करते समय इसे आगान करे, मन सा ध्यान करे, चिंतन करे। मन सा ध्यायन अप्रमत स्तुवित, मन से ध्यान करते हुए अप्रमत्त प्रमाद रहित तो होकर के। ध्यान शब्द ध्यान में के ध्यान प्रसिद्ध है, लोग ध्यान करते, ध्यान शब्द का अर्थ खाली आंख बंद कर देना, सर सीधा कर देना, ऐसा नहीं। चिंतन, तो चिंतन तो सब करते ही, मन से तो चिंतन होता है, किंतु सब चिंतन नहीं, एक चिंतन लगातार करे, ध्येय चिंतायाम। चिंतन का बिल्कुल अभाव कर दे, खाली हो जाए वो नहीं, कोई कोई खाली हो गया खुश होते हो गया, लयावस्थाएं क्या जाती है। ध्येय का चिंतन करना है ध्यान, पहले तत्र प्रत्येकता ध्यान, कि जहां देशबंध चित्त से धारणा, चित्त को लेकर किस दशा में लगाना ये धारणा हुई, उसके बाद उसी स्थल पर उसको लगातार चिंतन करे, उसका नाम ध्यान। ध्येय का चिंतन है ध्यान, ध्येय क्या निर्णय नहीं करके ध्यान, कोई तो ध्यान करते पूछा किसका ध्यान करते हो, बोलते तो हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते तो किसका ध्यान करते हो वो पता नहीं, ध्यान करते हैं। ध्येय क्या मालूम नहीं, ध्यान करते हैं, वो ध्यान नहीं। चित्तवृत्ति निरोधता आया प्रहिरे, किंतु ध्यान क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोधता पहले सूत्र है, किंतु ध्यान क्या है, तत्र प्रत्येकतानता, तत्र तस्मिन विषय किस ध्येय में प्रत्यय चिंतन लगातार चले, ध्येय में चिंतन लगातार चले, ये ध्यान है। ध्येय मालूम नहीं खाली ध्यान, ऐसा नहीं होता है, ध्येय कोई है चिंतन करना ध्यान। ये यदि कुछ भी ध्येय के बिना इसे खाली मन हो गया, चिंतन ही नहीं रहा, ध्यान कहाँ हुआ। ध्यान में बैठते तो मन तो भागता ही रहता है इधर उधर, विक्षेप होता है, बहुत प्रयत्न करके मन को हटा करके जब लगाते हैं, ये भी कोई लक्ष्य निश्चय होकर के ध्येय में मन को लगाए तब मन हटता है, और मन से विक्षेप हट गया तब एक अवस्था आती है लय अवस्था। बहुत में इसे विक्षेप तो बहुत होता ही है, बहुत प्रयत्न करके मन को थोड़ा लगाया तो लयावस्था, निद्रा होने की पूर्व अवस्था, ये नींद कितने लोग तो सो जाते हैं, निदा नींद आ जाते फिर उठ जाते फिर ऐसे हो जाते फिर बढ़ जाते हैं, ऐसे करते करते एक घंटा कट जाते, खुश होते बड़ा अच्छा ध्यान लग गया, ध्यान क्या हुआ ऐसे ही ध्यान, थोड़ी देर फिर शांति हो गया, फिर मन फिर इधर उधर हो गया, फिर थोड़ी चिंता गया, फिर सो गया, और एक कसाय ऐसे ही कुछ नहीं, स्तब्ध हो जाता मन विषय, इसे लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सकसायम विजानियात समम प्राप्तम न चाड़े थे। मांडू को कार्यक्रम में गौड़पाद ने कहा लय संबोधित, लय अवस्था में चित्तम सम्यक बोधयेत, तुम्हारे जो चिंतन करते हो अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करते हो उसको बोधन कराओ, अथवा लक्ष्य का चिंतन कराओ, लय अवस्था में मन को लगाओ लक्ष्य में, मन खाली हो गया तो ध्यान नहीं हुआ। बहुत लोग सोचते हैं चित्तवृत्ति निरोध मन खाली करके रह जाना, पहले क्या खाली करना कठिन होता है, इसे खाली करने के लिए कहते हैं, किंतु खाली पूरा करके रह गया तो ध्यान नहीं हुआ, लक्ष्य का चिंतन होना चाहिए। लय अवस्था हो तो चित्तम सम्यक बोधे थे, चित्त को बोधन कराकर लक्ष्य में लगाए, और फिर मन जब लयावस्था से हट जाए, लयावस्था में तो सोच लेते बड़ा ध्यान लगा, और लयावस्था से अपने स्वरूप ध्यान ध्येय का मन में लगाए ध्येय में मन को लगाया तो मन फिर बाहर ही भाग जाएगा, तो विक्षिप्तम समय उत्पन्न, फिर विक्षेप हो गया थू ला करके मन में लगाओ, लय अवस्था में लक्ष्य में लगाओ, बाहर चला गया तो फिर लाकर लगाओ, और एक सकसाया कसाया स्तब्ध हो जाता मन, विषय चिंतन नहीं, लय नहीं हुआ, ऐसे करके रह गया, वो भी ठीक नहीं, उसको समझे वो ध्यान समझ कर प्रसन्न नहीं हो, एक रसास्वाद होता है, थोड़ी समय रह गया बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ा ध्यान लक्ष्य चिंतन छोड़ दिया, इधर रसास्वाद करने लगा, बड़ा अच्छा ध्यान कर रहा हूं, और मैं ध्यान कर रहा हूं ये भावना चलती है, तो ध्यान कहां, लक्ष्य चिंतन इतने करे तो अब मैं ध्यान कर रहा हूं ये भावना भी नहीं हो, रसास्वाद भी नहीं हो, विक्षेप नहीं हो, लय भी नहीं हो, लगातार चले तो ध्यान होता है, फिर इसे ध्यान करते करते जब ध्याता ध्यान ध्येय ये भावना छोड़ जाए, छूट जाए, ध्यात्री ध्यान परित्यज क्रमात् ध्येय का गोचर, क्रम से होता है, एक साथ नहीं होता है, निवात दीप व चित्तम समाधि, तब समाधि होती है, तो इसलिए ऐसे करना पड़ता है, अलग अलग सब चिंतन करके फिर बाद हटा करके लगाए, तो इसी प्रकार चिंतन ध्यान करना पड़ता है, और जब यहां मनुषाध्यायन अप्रमत स्तुवित, जो स्तुति पाठ स्तोत्र पाठ करते हैं मन से परमात्मा का ध्यान भी करे, और स्तोत्र पाठ करते समय उसमें अप्रमत्त हो, प्रमाद रहित होकर स्तोत्र पाठ करे, एक तो ध्यान स्तोत्र के बिना बैठकर ध्यान करते हैं जप के बिना, और कभी जप के साथ ध्यान करते हैं, कभी स्तोत्र करके भी ध्यान करते हैं, तो स्तोत्र करते समय ध्यान पाठ करते तो ध्यान करते समय स्तोत्र पाठ में अप्रमत्त स्तुवित प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद क्या है, पाठ में प्रमाद होता है, वर्ण का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, कहीं वर्ण छूट गया, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण उसमें श श स ये सब का उच्चारण पाठ करते समय उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, बहुत समय में पाठ करना नियम इतने पाठ करना उसको कर लेना और जल्दीबाजी कर इधर उधर छोड़ कर दिया अशुद्ध बोल दिया, ऐसा नहीं, शुद्ध उच्चारण सीख करके ह्रस्व दीर्घ, एक मात्रा ह्रस्व तो दीर्घ दो मात्रा है, दीर्घ ऐसे सूत्रम ऐसे बोलते समय ह्रस्व दीर्घ राम रा दीर्घ है तो म ह्रस्व है, रा मा करके दोनों को बराबर कर दिया तो दोनों दीर्घ हो गया, एक दीर्घ एक ह्रस्व राम म उच्चारण ह्रस्व होता है समृद्ध होता है, ऐसे मुख फाड़ कर बोलो और नहीं होगा आ हो जाएगा, जो रामा बोलते है ना बोलने का कहानी के मुख ऐसे खोल कर बोले, ऐसे खोल कर बोले तो और नहीं होगा समृद्ध होता रा म ऐसे पुष्ट ऐसे होता म ऐसे होगा ऐसे म करे तो आ हो जाएगा, इसे समृत विवृत ये भी समझना, उच्चारण करते समय इसे मंत्र रामाय शिवाय य है, शिव है शिवा नहीं शिव, शिव है शिव जी कहते हैं, वो पांडुरंग राम कृष्ण आगच्छ आगच्छ गच्छ गच्छामि, इसे ह्रस्व दीर्घ ये भी देखे, ये दीर्घ है लघु गुरु भी विचार करे, एक गुरु उच्चारण होता है, गुरु उच्चारण होता है तो आगे संयोग है तो जैसे पंचधा है, पंचधा पंचधा पंच में प में तो ह्रस्व है, यहां से आगे संयोग है तो अ को गुरु करना पड़ेगा, गुरु करने के लिए एक य को इसके पैं पैं कर य को इधर बोला फिर इंच पंच दंत दंत द के साथ न को अधा बोलो दंत, बीच में जीवा छोड़ना नहीं तब गुरु होगा, न तो है अंत वेदांत अंत अंत ये कष्ट कष्ट बोलते कष्ट कष्ट बोलते समय कष्ट ये गुरु होता है, समय के गुरु पशुभ्य 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 कह दिया गुरु नहीं हुआ, पशुभ्य हरि हरिणा हरिभ्याम हरिभ्य मुनिना मुनेभ्याम मुनिभिः मुनये मुनिभ्याम मुनेभ्य मुनेभ्य कहते समय मुनि में ईद रहस्य है, उसको गुरु करना पड़ेगा, आगे भ यह है, गुरु करने के लिए उत्तर भ में जो प्रथम भ को मुनि के साथ जोड़ो, मुनि मुनिभ्य मुनि भी कह करके उसको छोड़ना नहीं, मुनिभ्य ऐसा उच्चारण करना पड़ता है गुरु उच्चारण, तो इसे कहते स्तुति करते समय अप्रमत स्तुवित। अप्रमत के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं स्वर उष्म व्यंजनादि से प्रमाद रहित होकर कर स्तोवन करें। सर्वे स्वरा इंद्र से आत्मान सर्व उष्मान प्रजापतिरात्मान सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्मान स्तं यदि स्वरेश उपालभेतेन्द्रं शरणं प्रपन्व भुवं सत्वा प्रतिवक्षति तेनं ब्रूयात। सर्वे स्वरा स्वरवन अ ई ऊ री ली अति स्वरवन इंद्र से आत्मन इंद्र के स्वरूप ही बलकर्मा इंद्र प्राण उनके अवयव स्वरूप ही। सर्व उष्मान प्रजापते उष्म वर्ण है श ये बोलते समय कर्म निकलता ये किसका है प्रजापति के स्वरूप ही। सर्वे स्पर्शा स्पर्श वर्ण कहते कादेव आवसना स्पर्श क ख ग पांच वर्ग प्रत्येक वर्ग में पांच पांच पच्चीस हो जाएंगे मालूम है क ख ग घ ये पांच हुआ क वर्ग क्या के च वर्ग आया छ पांच फिर ट वर्ग आया ट ट ड ठ न फिर त वर्ग त थ द थ न फिर प वर्ग प प प प म क से लेकर मत आएगा तो पच्चीस हो जाएगा। ये स्पर्श वर्ण है। मृत्यु आत्मा न मृत्यु के स्वरूप आत्मा है देह के अवयव सामान। ऐसे उच्चारण करते समय यदि कोई कहता है तुम्हारे उच्चारण में गलती हो गई तम यदि स्वरेश उपालभेद कोई दोष दे तुम्हारे स्वर वर्ण में उच्चारण दुष्ट दोष युक्त हुआ तो उपासना करने वाले कहेगा इंद्रम शरणम प्रपन्न भूवम क्योंकि स्वर वर्ण है किसका इंद्र का इंद्र का तो मैं इंद्र देवता के शरण में प्रावस्थित हूँ शरण में आ गया सत्वा प्रतिवक्षति इसका उत्तर तुमको देगा। यदि मेरे स्वरवर्ण में गलती हो तो इंद्र के शरण में मैं हूँ। जो कोई दोष देने वाले को ये कहेगा इंद्र तुमको कहेगा इंद्र तुमको इसका उत्तर देगा अर्थात इस उपासना करने वाले में कहीं त्रुटि हो जाए तो दूसरे व्यक्ति उसको नहीं ऐसा कहे कहने का अधिकार जिसका है वो कहेगा। जैसे कि ब्रह्मा होते हैं ब्रह्मा होता है दोष मार्जन करने के लिए कहेंगे दूसरे व्यक्ति कहेगा आपने उच्चारण गलत कर दिया। जो उपासक है यदि उसको दोषारोप किया किसने वो कहेगा मैं इस देवता के शरण में हूँ वो देवता तुमको उत्तर देगा। ये तो आप प्रतिवक्षति देनम रुयात अथ यद्यनम उष्म सुपालभेद प्रजापति शरण प्रपन्न भुवम सत्ता प्रतिपेक्षति तेनम ब्रूयात अथ यद्यन स्पर्शे सुपालभेत मृत्युम शरण प्रपन्नोभुवम स्वत्वा प्रतिधक्षति तेनम ब्रूयात। ये ऋत्यु उपासना करता है उपासना करके शुद्ध उच्चारण तो करना चाहिए अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शुद्ध करने के बाद भी कोई यदि उसको दोषारोप करे ये नहीं कि बिल्कुल गलत बोलता है कोई कहने से इसे कह देने से डरा दे ऐसा नहीं अप्रमत्त होकर उच्चारण करता है तो भी यदि कोई दोष देता है उष्मा वर्ण में कोई दोष दे तुम्हारे स स्पष्ट उच्चारण नहीं हुआ तो कहे प्रजापति के शरण में मैं हूँ सत्वा प्रतिपेक्षित तुमको प्रतिकूल से पीस डालेगा ऐसे यदि दोष देते तुम ऐसा कहे अथ यदि एनम स्पर्शेशु स्पर्श वर्ण का ख गादी तो मृत्यु शरण मृत्यु देवता के शरण में मैं हो गया हूँ सत्ता प्रतिधक्षति तुमको जला डालेगा ऐसे कहते भस्म कर दे। ये भी कौन कहता है जो उपासक ऋतु के ये कहा गया ये उपासना करने से सामर्थ्य आता है खाली कहते से नहीं होता है उपासना इतने दृढ़ हो और उसके बाद भी अप्रमत्त होकर के ठीक उच्चारण करे ध्यान भी करे उच्चारण भी ठीक करे उसके बाद भी यदि कोई दोष देता है कभी कभी ऐसा होता है कोई सहन नहीं करके ईर्षा के कारण ऐसे कहते दोष दिखा देते गलत बोलते हैं। ये सामान्य साधक के लिए सब जरूरत नहीं है जो इसे उपासक है और उच्चारण स्पष्ट से ठीक करता है उसके बाद भी कोई कहता तो उसके लिए कहा साधारण तो उच्चारण करते समय गलत हो जाता है गलत उच्चारण बहुत स्वाभाविक है बहुत अप्रमत्त होकर करे तभी तो बड़ा कठिन है। शुद्ध उच्चारण करने वाले बहुत विरल है बहुत बड़े बड़े बोलते हैं तो बहुत उच्चारण अशुद्ध कर देते हैं। सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्रे बलम ददानीति सर्व उष्मान अग्रस्तानि रत्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिहिता वक्तव्या मृत्युरात्मानं परिहरानीति। ये सर्वे स्वरा अ ई उ आदि स्वरवन उच्चारण करते समय घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, घोष शब्द हो बलवान स्पष्ट उच्चारण हो। इंद्र बलम ददानीति, इंद्र देवता में बल में देता हूं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, इंद्र बलम ददानीति, इंद्र में मैं बल देता हूं, इंद्र देवता का चिंतन करता हूं। ऐसे सोच करके उच्चारण करते समय ये इंद्र का है तो सारे बल उस समय दे करके ठीक उच्चारण करें, देवता का स्मरण करें। सर्वे उष्माणो अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या, उष्मा वर्ण है श श स, उच्चारण करते समय जैसे उसको ग्रास कर लिया, कोई वर्ण बोलते समय बाहर कुछ निकलता है कुछ अंदर रह गया, जैसे खाते समय अंदर कुछ रह गया, कोई बोलते खा लेते हैं वर्ण का, खा लेते मतलब निगल लेते हैं बाहर निकलता नहीं, बाहर एक दो शब्द वर्ण आया और दो तीन अंदर रह गया। उच्चारण करना है दूसरे को सुनाई पड़े, दूसरे को सुनाई पड़े से उच्चारण करना, नहीं तो उच्चारण व्यर्थ हुआ। जब मंत्र जप करते हैं, मानस जप करते हैं, ऐसे पांच जप करते अलग बात है, पाठ करते समय उच्चारण करें, उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। तो ग्रास नहीं किया अथवा निरस्ता मतलब वायु फेंक दिया बाहर, ये भी नहीं है। विवृता, विवृता प्रयत्न से उच्चारण करना है। प्रजापतिर आत्मानं परिददानीति, ये प्रजापति के स्वरूप है उनको मैं देता हूं, उच्चारण करते समय प्रजापति देवता के स्वरूप है ये वर्ण, उनको मैं देता हूं। आगे सर्वे स्पर्शवन का से क से लेकर म तक, लेशेन अनभिहिता लेशेन अनभिनिहिता, थोड़े से भी अभिनिहित नहीं हो, अति द्रुत नहीं उच्चारण, वर्ण उच्चारण करते समय अति द्रुत नहीं हो ऐसे उच्चारण करे वक्तव्या। मृत्युर आत्मानं परिहराणी थी, मृत्यु के आत्मानं, जैसे कोई छोटे बच्चे को लेते हैं बिल्ली आदि व्याघ्री भी लेते हैं, ना गिर जाए ना कि दांत से चबाए, व्याघ्री यथा हरित पुत्रम, जैसे बिल्ली को देखा होगा बच्चे को लेकर जाते समय मुख में लेकर चल जाए, मुख में लेते समय ऐसा कि मुख से गिर ना जाए और दांत उसमें लगे नहीं, इसी प्रकार तो उच्चारण करते समय इस प्रकार फेंका नहीं जाए अंदर नहीं हो ऐसे करके अप्रमत्त होकर के उच्चारण करे। अभी द्वादश खंड हुआ है, अभी त्रयोदश खंड में अभी धर्म के विषय में विचार आएगा। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययन दानमिति प्रथम तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोमृतत्वमेति। त्रयो धर्म स्कंधा, तीन है धर्म के स्कंध, स्कंध के समान है कांध के समान, तीन धर्म के अलग अलग है। ये धर्म के लिए प्रारंभ करते हैं, सारे उपासना तो हो गया, आगे धर्म के स्कंध, धर्म का विभाग, धर्म का विभाग करते अलग अलग, जिस क्रम से कह गया ये क्रम नहीं है, तीन का नाम लेते हैं। अध्ययन दानमिति प्रथम, एक अध्ययन और दान ये प्रथम हुआ, धर्म का विभाग हुआ। तो अध्ययन में अग्निहोत्रादि कर्म करना है, यज्ञ रह गया, यज्ञो अध्ययन दानम, यज्ञ अध्ययन दान, यज्ञ अग्निहोत्रादि कर्म करना, ये गृहस्थ का धर्म है। ये नहीं कि पहले गृहस्थ आश्रम, ये अर्थ नहीं, तीन में से प्रथम कहा गया यज्ञो अध्ययन दानम, यज्ञ है अग्निहोत्रादि कर्म करे यज्ञ शब्द से जितने विहित कर्म हो गया उसके साथ गृहस्थ के लिए वेदाध्ययन भी आवश्यक है, अध्ययन भी करना चाहिए, ऋग आदि वेद का अभ्यास और दानम, ये भी एक गृहस्थ का प्रधान है। तीन यज्ञ भी अध्ययन दानम, ये शास्त्र में कहा गया गृहस्थाश्रम का धर्म। यज्ञ शब्द से अग्निहोत्र आदि अन्य विहित कर्म और वेदाध्ययन और दान, ये एक तप एवं द्वितीय, द्वितीय विभाग है तप। ये तप प्रधान होता है वानप्रस्थ आश्रम, द्वितीय हो गया तप। इसमें इसलिए जो क्रम दिया है ये क्रम नहीं विभाग किया। दान में एक दान होता है कर्म करते समय कर्म के अंग में दान आता है, कर्म के अंग में ये कर्म करते समय कुछ दान दक्षिणा देना है, वह दान कर्म का अंग हुआ, कर्म फल ही कर्म का जो फल उसमें अंतर्भूत हो गया, अलग उसका फल नहीं है। कोई कर्म करता है इसमें इतने दान करना है, कोई कोई कर्म में तो सर्वस्व दान करते हैं, जिस कर्म का लिए जिस कर्म के लिए जो दान कहा गया वो दान देना वो अलग है। किन्तु ये जो सामान्य दान है शरणागत संतराणम भूतानां च पहिशनम अहिंसनम बहिर्वेदिचय दानम दत्तम इति अभिधीयते। इष्ट पूर्त दत्त तीन कर्म है। दत्त होता है बहिर्वेदीय दानम, वेदी के बाहर, वेदी का अर्थ कर्म के अंग अनुष्ठान करते समय वेदी में जो दान हो वो तो कर्म के लिए हुआ, वो कर्म को छोड़कर जो दान है उस दान को लेना है वो दान। तप हो गया प्रधान वानप्रस्थ आश्रम में, तप अधिक है, कृच्छ चांदन आदि तप करे अर्थात सन्यासी भी तप करता है। 75 वर्ष पूरा होने के बाद 50 वर्ष पूरा होने के बाद 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए और तप करना है, बड़े तप उसमें कहा गया। तप करने के लिए शरीर में सामर्थ्य नहीं तो वो शरीर को काष्ठ प्रज्वलित करे, शरीर को उसमें दाह छोड़ दे, त्याग कर दे, ये कहा गया। किंतु अभी कलयुग में ये वानप्रस्थ आश्रम अथवा 75 पूरा हो गया तो सन्यास आश्रम में जाना चाहिए, ये जो क्रम सन्यास कलयुग में नहीं है। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, ये क्रम हुआ। 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम में जाए, 50 के बाद वानप्रस्थाश्रम, 75 के बाद सन्यासाश्रम। यदि वे इतर था ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत गृहादवा वनादवा, यदि वह इतर था, यदि वैराग्य है दृढ़ इतरता का, तो पहले तो हा वैराग्य नहीं होने पर भी जाना, यदि वैराग्य है तो ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजित, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी 25 वर्ष होने की आवश्यकता नहीं, सारे वेद अध्ययन के पहले यदि दृढ़ वैराग्य हो जाए तो संन्यास प्रव्रजित छोड़कर चल जाए। किसी का कुछ संस्कार कर्म कुछ वासना थी जिसके कारण कहीं गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गया तो गृहादवा, तो गृहस्थाश्रम में यदि वैराग्य हो गया, निज गृह तूर्णम विनिर्गम्यता भगवान भाष्यकार कहते हैं, वैराग्य हो गया जब वैराग्य हुआ छोड़ दो, दृढ़ वैराग्य चाहिए। और वनादवा 50 के बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट है किन्तु वैराग्य हो गया तो चले जाए। जो वैराग्य पूर्वक संन्यास है उसके लिए निषेध नहीं कलयुग में, किन्तु वैराग्य के बिना जो वानप्रस्थ आश्रम में जाना संन्यास आश्रम में जाना वो कलयुग में नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसलिए आई वानप्रस्थ आश्रम करके कहीं चले जाने से कुछ नहीं होता है, संन्यास केवल दीक्षा लेने से नहीं होता है, वैराग्य पूर्वक चाहिए। संन्यास का तो सम्यक न्यास त्याग, सम्यक त्याग है मुख्यतः ऐसा त्रय संन्यास, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ऐसा का त्याग, ऐसा का त्याग है संन्यास, ऐसा त्याग नहीं करे तो संन्यास नहीं है। तो ये हो गया जो वानप्रस्थ आश्रम में तप। तो जिस प्रकार 50 के बाद 75 में जितने तप करने के लिए कहा गया वो तप तो संभव नहीं है, तो भी इतने है 50 वर्ष के बाद थोड़े कुछ गृहस्थ आश्रम का कर्म पूरा करके साधन भजन में लगना चाहिए, ये समझना चाहिए हमारा ये समय हुआ, ये गृहस्थ आश्रम का समय पूरा हो गया, अभी अपना कर्तव्य आत्मा के लिए कुछ करें, कुछ जितने हो सकता है तपस्या व्रत आदि करें। अत्यंतम आत्मा तप एव द्वितीय, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयो, अत्यंतम आत्मानं आचार्य कुले अवसादयन। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचारी आश्रम में दो प्रकार है, एक तो उपकुर्वाण एक तो नैष्ठिक। जो पहले गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन करता है उसको कहते उपकुर्वाण, वो 25 वर्ष तक वेदाध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में जाएगा, आगे धर्म करने के लिए कर्म करने के लिए वेदाध्ययन करेगा, धर्म विचार करेगा, फिर गृहस्थ आश्रम में जाएगा। जो उसी बीच में भी अथवा बाद में निश्चय हो गया उसी समय कि मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, उसको कहते नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वो नैष्ठिक है तो उसका दृढ़ निश्चय हो गया गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, तो अत्यंतम आत्मानं आचार्य कुले अवसादयन, आचार्य कुल में रह करके संपूर्ण जीवन उसमें रह जाएगा, वेदाध्ययन करना, संध्या वंदन करते करते, सेवा करते करते इसे रहे। उसी अवस्था में यदि वैराग्य होता है तो संन्यास लेगा। अभी इस परंपरा अपने जो कोई साधक आता है तो पहले उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा देते, जब उसका दृढ़ निश्चय हो गया कि आगे गृहस्थाश्रम में नहीं जाएगा, कलाशाश्रम में नैष्ठिक ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी रहते हैं। जिसका दृढ़ निश्चय हो गया आगे गृहस्थाश्रम में नहीं जाएगा, बहुत लोग ऐसे अध्ययन करते हैं आगे गृहस्थाश्रम में जा सकते हैं, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। जब दृढ़ निश्चय हो जाए गृहस्थाश्रम में नहीं जाए तो काशावस्था देते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुआ, द्वैतोपासना करेगा, संध्या वंदन करेगा, वो भी उससे भी पुण्य लोक प्राप्त करता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी। और जब उसमें थोड़ा श्रवण वेदांत श्रवण किया, विचार समझा, वैराग्य हुआ तो संन्यास दीक्षा बाद में देते हैं। सर्वेते पुण्यलोका भवन्ति, तीन आश्रम हुआ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, तीन बताया, सन्यासी को नहीं कहा। तप में कोई तप, सन्यासी को भी तप करना चाहिए, ये तीन हुआ। इसे में जिस क्रम से कहा गया ये क्रम नहीं, पहले ब्रह्मचारी उपकुर्वाण, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद तप। और सर्वे तो पुण्य लोक प्राप्त करते हैं, पुण्य कर्म करने पर जो फल प्राप्त होता है वही प्राप्त करते हैं। ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में थी, जब ब्रह्म संस्थ है अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मणी सम्यक स्थिति संस्था यस्य, ब्रह्मणी संस्था ऐसे सब ब्रह्म संस्थ, जो ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है ब्रह्म निष्ठ होता है, ब्रह्म संस्थ हो गया। ब्रह्म में जिसकी संस्था सम्यक स्थिति, सम्यक स्थिति है, सम्यक स्थिति का तो अहम ब्रह्म दृढ़ निश्चय हो गया, संशय विपर रहित ज्ञान। सामान्य तो तुम ब्रह्म अहम ब्रह्म शास्त्र का सिद्धांत सबको थोड़े बहुत मालूम है, इतने मात्र से नहीं, संशय विपर रहित ज्ञान। इसे बताया था संशय प्रमाण संशय प्रमेय संशय, ये दोनों की निवृत्ति के लिए श्रवण मनन करना पड़ता है। संशय की निवृत्ति हो गई, संशय नहीं, तभी देह में जो अहम बुद्धि है उसको कहते विपरीत भावना, उसकी निवृत्ति नहीं होती। शास्त्र का तात्पर्य समझ लिया और प्रपंच मिथ्या संभव है स्वप्न दृष्टांत को समझ लिया और प्रक्रिया से समझ लिया है संभव है मिथ्या है ब्रह्म अद्वितीय में ब्रह्म ये संभव है, किन्तु मैं कहते समय जो देह में अहम बुद्धि है इसको कहते विपरीत भावना। अनादिकाल से देहादि में अहम बुद्धि करके इतने दृढ़ है, जितने समझने के बाद ही मैं ब्रह्म करते समय मैं तो इधर आ जाता है, उधर मैं नहीं होता है। विचार करते ब्रह्म जब कहते तो ब्रह्म कहीं ऊपर हो या व्यापक हो, ब्रह्म कहते समय लगता व्यापक, पर ब्रह्म व्यापक है, ठीक है, कोई तो ऊपर सोचते हैं नहीं तो कोई तो व्यापक है, किन्तु मैं कहते समय ऊपर ना व्यापक नहीं होता है। ऐसे ब्रह्म कहते समय लगता है ऊपर ब्रह्म है अथा पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, किन्तु मैं कहते समय उधर हाथ तय करना नहीं पड़ता, मन से उधर नहीं होता, मैं कहते समय इधर आ गया, इसका नाम विपरीत भावना। ब्रह्म और मैं दोनों अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही अर्थ, तो एक अर्थ होने पर भी जब तक विपरीत भावना है तो इधर मैं इधर ब्रह्म, ये जो मैं ब्रह्म चलता है, मैं शब्द का लक्ष्यार्थ समझे, अहम शब्द का लक्ष्यार्थ ब्रह्म एक समझ लिया, बीच में देह का कोई उसकी गिनती नहीं, देह के साथ कोई संबंध नहीं हो, अहम ब्रह्म एक अहम व्यापक ब्रह्म ऐसे यदि हो जाए, इसके साथ संबंध रहित होकर के, तो अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म बीच में ये उपस्थित हो जाता है। ये विपरीत भावना, ऐसे विपरीत भावना रहित ज्ञान, अहम ब्रह्म ज्ञान होता है, देह के साथ कोई संबंध नहीं। जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जिसको होता है, होने के पहले लक्ष्यात शुद्ध चिन्मात्र को जानता है मैं, और चिन्मात्र एक ही चिन्मात्र सबके अंदर बाहर एक ही, वो चिन्मात्र मैं हूं, मैं ब्रह्म करते समय इसके कोई नहीं। ये तो किसी कोने में बहुत बड़े मकान में कोई ईंट उधर रखा गया, कोई ईंट इधर रखा गया, अपने नाम लेकर के ईंट रखा था, मकान बन गया, वो कहा किस कोने में पड़ा है वो दिखता नहीं। इसी प्रकार अपना शरीर कहीं किस रहे उसके साथ कोई मतलब नहीं, परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि, अहम ब्रह्म करते समय एक ही जो ब्रह्म वही अहम। यदि ब्रह्म परिपूर्ण है तो अहम वही है, इधर नहीं। ये जो ज्ञान है ये सम्यक स्थिति संस्था निष्ठा नितराम स्थिति है, निष्ठा ब्रह्मणी निष्ठा से सब ब्रह्म निष्ठ, उसे नितराम स्थिति स्थिति इतने दृढ़ हो जाए तो आगे देह दिखने पर भी, देह से व्यवहार करने पर भी अहम ब्रह्म इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अज्ञानी को जैसे देह में अहम बुद्धि इतने दृढ़ है, कुछ भी कहने पर भी अहम ब्रह्म इसमें अहम बुद्धि, ज्ञान होने पर इसी प्रकार अहम एक शुद्ध चिन्ह मात्र में हूं इसे दृढ़ निश्चय इतना हो जाता है, तो देह से व्यवहार करते समय देह में अहम बुद्धि नहीं होती। जिस अपना स्वरूप ब्रह्म निश्चय इसे दृढ़ हो जाए, नितराम स्थिति निष्ठा, उसके लिए सब साधन है गीता में का अमानित्व मदमित्व आदि ज्ञान प्राप्ति का साधन। और उसके बाद स्थिति के लिए कहा, स्थित प्रज्ञ से कहा समय प्रजहाति यदा कामान सर्वान पात मन गोता, सारे काम को छोड़ देता है प्रजहाति, प्रकर्षण जहाती पूरा छोड़ देता है, सर्वान पात मनोगता, सारे छिपा करके रखने का नहीं, ऊपर से कहेगा मैं कुछ नहीं चाहता हूं किंतु अंदर वासना है वो नहीं, पूरा छोड़ देता है, तब तो ब्रह्म निश्चय होता है। ऐसे ब्रह्म संस्थ हो गया, उसके लिए तो सन्यासी के लिए तो कहा गया, कोई भी यदि ज्ञान को प्राप्त कर लिया, कल आया था ये बृहदारण्य के में आया था, यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत सैव तद अभव तथर्षीणाम तथा मनुष्यानाम, बृहदारण्य उपनिषद में आया था, देवता में जिसको इसे ज्ञान हो गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ऋषियों में मनुष्य में भी अभी भी जिसको ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसका विघ्न देवता भी कोई भी नहीं कर सकते। यो यो देवानाम प्रत्यय देवता में जो जो तथा मनुष्याणाम मनुष्य में यो यो प्रत्यबुद्ध जिस जिसको ज्ञान होता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वही ब्रह्म संस्थ ब्रह्मनिष्ठ। जिसको ज्ञान हो जाता है, पूर्व बहुत कुछ अभ्यास किया, अभी जन्म लिया, किसी को कम साधन से गृहस्थ अवस्था में ब्रह्मचारी अवस्था में भी ज्ञान हो सकता है, और इसी प्रकार बहुत श्रवण के बिना भी कम श्रवण से ज्ञान हो जाता है, गर्भ में वामदेव ज्ञान हो गया, और इस उसके बाद स्वल्प साधन करने भी ज्ञान किसको इसे कम हो जाता है, किन्तु जिस समय ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। जब तक सरल रहेगा उसको कहते जीवन मुक्त, शरीर समाप्त होने पर प्रारब्ध कर्म जब तो है तब तक शरीर रहता है, इसमें आगे आएगा तब से तावदेव चीरम यावन न विमुक्षी, तब तक वो रहेगा शरीर जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर अथ संपत् सद ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये हो गया ब्रह्म संस्था अमृतत्व, इति अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है, और ज्ञान के बिना जितने भी कर्म उपासना करे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सगुण साक्षात्कार करने पर भी मोक्ष नहीं होता है, सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, जो ब्रह्म लोक को प्राप्त करते सगुण ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा, फिर ज्ञान नहीं होगा, फिर पुनरावृत्ति आ ब्रह्म भूमान लोका पुनरावृत्ति न, जिस ब्रह्म में स्थित होने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अब उसका निर्णय निरूपण करने के लिए प्रारंभ करते हैं। प्रजापति लोकानभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रयी विद्या संप्रास्रवत् तामभ्यतपत् तस्याभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्रवन्त भूर्भुवस्वरिति प्रजापतिर् लोकान् अभ्यतपत्। लोकों को उद्देश्य करके सारे लोक के सार ग्रहण करने की इच्छा से तप किया, ध्यान किया, ध्यान ही ज्ञान रूप तप, ध्यान किया, लोगों का सार ग्रहण करने के लिए तप किया। लोगों का क्या सार है? तेभ्यो अभितप्तेभ्य, सारे लोक तप्त हुए, प्रजापति ने ध्यान किया, तप्त होने पर त्रयी विद्या संप्रासवत, त्रयी विद्या तीन विद्या वेद की उसमें उत्पत्ति हुई। ताम अभ्यतपत, ताम विद्या का भी तपाया, विद्या में भी क्या सार है, वेद त्रय में सार क्या है, तस्या भी तप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रासवंत। ये त्रयी विद्या का तप करने पर, ध्यान करने पर उसमें क्या सार है, सारे वेद में ऋग यजु साम ये तीन अक्षर निकले सार होते है। तीन अक्षर क्या है? भूर भुव स्वर, तीन। भुव में एक अ भी है किंतु भुव एक अक्षर कहा, तीन है, इसको व्याहृति कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के मुख से पहले निकला भूर भुव स्व, तीन व्याहृति है, प्रथम उच्चारण किया। तान अभ्यतपते भ्यो अभितप्तेभ्य ओंकार संप्रास्रवत् तद यथा संकुना सर्वाणी पर्णानि संतृणान्येवम् ओंकारेण सर्वावाक् संतृण ओंकार एवेदम् सर्वम् ओंकार एवेदम् सर्वम् तानि अभ्यतपत् भूर भुवः स्वः तीन अक्षर, इनको भी उद्देश्य करके तप क्या, ध्यान किया। ये नहीं कि उनको लेकर कहीं गर्म किया, ऐसे नहीं, तप क्या, ध्यान किया, उनके उद्देश्य करके इसमें क्या सारे है चिंतन किया। ध्यान ऐसे करने पर अभी भी जो ध्यान करते हैं, ध्यान में कभी किसको कुछ प्राप्त होता है, बहुत ध्यान करने पर ऋषियों का मंत्र ज्ञान, मंत्र दृष्टा, ऋषियों मंत्र दृष्टा, मंत्र का दर्शन होता है। सामान्य कोई ध्यान करने पर कभी कुछ रूप दिख जाता है, कभी इष्ट देवताओं का दर्शन हो जाता है, कभी कुछ शब्द श्रवण होता है, कभी कोई ऐसे होता है यदि साधक अच्छा साधक है उसको ऐसे कहीं सद्गुरु प्राप्त नहीं हो पाए, ऐसा कहीं गलत मार्ग में है, वो ध्यान करता है तो परमात्मा कृपा करके उसको किसी प्रकार सन्मार्ग में लेने के लिए कुछ प्राप्त करा देते हैं। कभी कभी ध्यान में रहते समय उसको ऐसे ही झटक जैसे लगता है, आधा सपना जैसे, और कोई कुछ बोल दिया, कोई कहा, कौन कहा कि किसे नहीं पता, किन्तु बता दे ऐसे करो, ये नहीं इधर चलो, ऐसे थोड़े शब्द आ जाता है। वो साधक स्वयं जो करता अनुष्ठान ध्यान करता है उसको ऐसे मिल जाता है। कभी कभी किसी को कुछ हो मार्गदर्शन परमात्मा किसी प्रकार करा देते हैं, जैसे कभी बैठे बैठे किसी को झटकन लगा, स्वप्न थोड़ा लग जाता है, कभी कभी इतने थोड़े कुछ हो गया सपन जैसे लगा कि सत्य जैसे लगता है, और उसमें किस किस को कुछ ऐसे उपदेश। अभी भी बहुत लोग सामान्य लोग जो कुछ दुखी होकर परमात्मा चिंतन करता है, स्वल्प स्वप्न जैसे हो गया उसको औषध बता देते हैं, अथवा कुछ बता देते हैं, कुछ को वर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कुछ कुछ दर्शन श्रवण हो जाता है, कर्ण में स्वर श्रवण होता है, और दृश्य कुछ दिख जाता है, कोई कोई ऐसे रूप दिखते तो रूप कुछ दिखा, ज्योति कुछ प्रकाश देगा, इसको भी परमात्मा दर्शन हो गया सोच करके खुश हो जाते हैं। सगुण ब्रह्म सगुण कोई इष्ट देवता दर्शन हो गया, ये सपने में कुछ दिख जाता है, वो प्रगति के लिए एक सूचक अच्छा है, किंतु उसको परिपूर्णता मान करके रह गया छोड़ दिया वो नहीं होता है। तो ये इसी प्रकार ध्यान करने पर उसमें सार क्या है, भूर भुव स्वः ये तीन अक्षर इसमें क्या सारे, ध्यान करते 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 उनको ध्यान में से आया। कोई सामान्य विषय विचार करते हैं, शास्त्र चिंतन करते समय कोई पंक्ति का अर्थ विचार करते हैं, कोई गणित आदि करते समय कहीं कुछ अटकर विचार करता है, कुछ शास्त्र चिंतन करते पढ़ते समय जो कुछ कॉलेज आदि में पढ़ते विद्या कुछ पढ़ते समय चिंतन करते समाधान ही होता है, वैद्य को इसी चिंतन करता है क्या औषधि हैं क्या करें, ऐसे करके जो सोचते हैं ध्यान करते एकाग्र होते हैं, मन एकाग्र होने पर ये मन में बहुत संस्कार है, बड़े सामर्थ्य है। कभी ऐसे होता है तो एक झटके से समाधान आ जाता है, कभी कुछ लह गया नहीं होता है, सोया हटा तो उठ गया, उस हटा तो उसका समाधान आ जाता है। ऐसे बहुतों का अनुभव हो जाता है, किस प्रकार आया कैसे आया नहीं बता पाएगा, सोते सोते नहीं होता है ऐसे सो जाता है, फिर उठा उसको हटा तो उसका स्मरण हो जाता है। सामान्य शास्त्र में कोई पंक्ति कोई सूत्र खंडते है, समय पर उपस्थित नहीं होता है, सोते रहते क्या सूत्र लग गया क्या, दो तीन दिन लगते हैं हटा तो फिर अपने आप आ जाता है। तो इसी प्रकार इनको प्रजापति है स्वयं, वो ध्यान करने से उनको सार दिखने लगा निकला। भूर भुव स्व इसको लेकर जब तप किया, तान अभ्यतप तेभ्य अभितपते हुए ओंकार संप्रासवत, ओंकार वन सम्यक निकला, ये सब में श्रेष्ठ करेगी। तद यथा संकुना सर्वाणी पर्णानी संतृणानी एवं ओंकारेण सर्वावाक संतृणा। पिपल वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते सूख जाने पर देखा होगा उसमें जाली जाली भरा हुआ, सारे पन्ने में जाली जाली अंदर भरा, ऊपर तो हवा कच्चा है तो हरा हरा दिखता है, किंतु सूख जाने पर हरा से चला गया जाली जाली, जैसे शंकु के सिरा प्रसिरा होकर के सारे पन्न फैला हुआ, इसी प्रकार एवं ओंकार ने सर्वावाक संतरना, सारे वाक वेद शब्द जितने जहां है ओंकार से सब व्याप्त है, ओंकार ही मूल है। ओंकार में पहला अक्षर होता अ, आगे उ और म मिलकर ओम बना, अ उ मिलकर के ओ हो गया, अब मकार अनुसार ओम बन जाता है। ये अकार वही सर्वावाक श्रुति कहती सारे वाक अकार ही है, अ से प्रारंभ होता है जितने स्वरवर्ण, और स्वरवर्ण सेन राजतीति स्वर, अरे व्यंजन विगता अंजना यश व्यंजनम, स्वर के बिना जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, विगता अंजना अभिव्यक्ति जैसे तद व्यंजनम, व्यंजन वर्ण ह य क ख ग इत्यादि उच्चारण करेंगे तो स्वरवर्ण के साथ, स्वरवर्ण छोड़ करके उनके व्यंजन वर्ण उच्चारण करो, एक शब्द बोलते समय अंत में जैसा ह य व रट, ह य व रट रामात, इसमें तो रामा में दो होने के बाद तकार अंत में आधा आ गया, ह य व रट, ह य व र चार अ बोल करके अंत में टकार हो गया, और उस खाली के व्यंजन मन को बोले ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए अकार पूर्वक स्वर पूर्व वर्ण को साथ मिला करके शब्द का उच्चारण होता है, और अ हो गया मूल सारे स्वर्ण का, और जितने वाक है स्वरवर्ण के बिना उच्चारण नहीं होते है, अकार वही सर्वावाक सारे वाक में अकार है, ओंकार का पहला वर्ण अकार है, सारे शब्द ओंकार, और ओंकार शब्द है एक शब्द ब्रह्म वेद है मूल ओंकार, ओंकार से ही अभिव्यक्ति होती सारे वेद मंत्र, इसे सारे वाक ओंकार मूलक सारे वेद में श्रेष्ठ हो गया ओंकार, एवं सर्वम ओंकार सर्वावाक संतरणा, ओंकार है वेदम सर्वम, जितने शब्द है शब्द किसी अर्थ का वाचक होता है, एक शब्द और एक अर्थ, एक पुष्प शब्द ये पुष्प का अर्थ हुआ, पट शब्द इसका अर्थ पट है वाच्य हुआ, अर्थ होता है वाच्य, शब्द होता है वाचक, ये वाच्य वाचक भाव की सृष्टि है, सृष्टि अर्थ को रूप शब्द से कहते और वाचक को नाम शब्द से, नाम रूप की अभिव्यक्ति है सृष्टि, रूप शब्द से नील पितादि रूप भी लेते हैं, खाली नील पितादि लेने का नहीं है, क्योंकि नील पितादि रूप और शब्द वाचक को छोड़ेंगे तो बहुत पदार्थ है, शब्द का कोई रूप नहीं, रस का कोई रूप नहीं, गंध का कोई रूप है रंग, शब्द का कोई रंग रस का गंध नहीं, तो नाम रूप की उत्पत्ति है, तो नाम शब्द से शब्द रूप अर्थ, आकाश शब्द आकाश का अर्थ जो बनाता है, को हम शब्द कहते हैं, एक शब्द उच्चारण करते श्रवण इंद्रिय से सुनते उसका अर्थ यह है, पुष्पम कह दिया श्रवण इंद्रिय से पुष्प शब्द सुना, क्योंकि पुष्प का जो अर्थ उसको श्रवण इंद्रिय से गण होगा, ये पुष्प का अर्थ श्रवण इंद्रिय से गण नहीं होता है, ये तो चक्षु इंद्रिय से गण हुआ, सुगंध दुर्गंध सुरभि सुगंध शब्द तो सुन दिया किन्तु सुगंध का ग्रहण घ्राण इंद्रिय से होता है, तो एक अर्थ होता है कि शब्द, ये नाम रूपात्मक सृष्टि है, तो सारे पदार्थ जितने ओंकार मूल हो गया, ओंकार वेदम ये कहना है सारे अर्थ का एक एक वाचक शब्द और अर्थ शब्द दोनों का इतने अभेद संबंध है। शब्द कहेंगे तो अर्थ का स्मरण हो जाएगा, जिसको शक्ति ज्ञानी इस शब्द का क्या अर्थ मालूम है, शब्द कहते अर्थ उपस्थित तो होता है, अर्थ देखने पर शब्द उपस्थित तो होता है। ये व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पातंजलि ने बड़ा विचार किया, शब्द अर्थ का भेद है अभेद है। यदि अभेद मानेंगे विचार आया, गुड़ कहेंगे तो मीठा लगना चाहिए, शब्द में गुड़ शब्द क्या तो मीठा लगे, अच्छा कुछ छुरी कह दिया तो जीवा आदि कट जाएगा, छुरी ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। भेद कहेंगे, भेद भी अत्यंत नहीं होता है, ये शब्द अर्थ का संबंध है, सिद्ध शब्दार्थ संबंध है, ये शब्द अर्थ का संबंध सिद्ध नित्य है। तो कहेंगे अभेद भी कहा, कुछ कुछ अभेद है कुछ कुछ भेद है, अर्थ शब्द से भिन्न नहीं शब्द अर्थ से भिन्न नहीं, यह भी जो कहते हैं, जैसे दृष्टि स्वप्न में पदार्थ आपको दिखते हैं, जो पदार्थ दिखते हैं आप देखते हैं आपको प्रतीति होती है, ये ज्ञान प्रतीति होती है, प्रतीति से ज्ञान से भिन्न अर्थ है। स्वप्न में देखा हाथी है कमरा में, दो हाथी, दस हाथी भी देख लिया, देख सकते सपने हाथी आ सकता है कमरा में, कितने हाथी वास्तव है समय अर्थ है। रज में सर्प देखते हैं, सर्प है ही नहीं, किन्तु हम केवल प्रतीति होती, इसको कहते हैं प्रातिभाषिक, अर्थ के बिना प्रतीति। जैसे प्रातिभाषिक प्रतीति होती अर्थ कुछ नहीं है, यही वेदांत का सिद्धांत है, व्यवहार प्रपंच भी प्रतीति मात्र है अर्थ के बिना। और ये कैसे संभव हो सकता है, उसका उत्तर है जैसे स्वप्न, जितने शंका सब स्वप्न दृष्टान से समाधान हो जाएगा। स्वप्न में क्या क्या पदार्थ दिखता है, क्या नहीं दिखता है, पर्वत समुद्र क्या नहीं देगा, सब दिखता है। पर्वत क्या स्वप्न में छोटा छोटा, समुद्र छोटा छोटा दिखता है, बड़ा 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 बड़ा, और कहां दिखेगा, कमरा में बैठा आंख बंद कर बैठे, शरीर के अंदर कोई जगह नहीं, उसमें पहाड़ पर्वत सब बड़ा बड़ा दिखता है, दिखता है कुछ है ही नहीं। प्रतीति जगने के बाद दिखते कुछ नहीं था, और देखते समय कोई सोता मैं स्वप्न देख रहा हूं कुछ नहीं मिथ्या, कोई कहे तो भी नहीं मानेगा मिथ्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मिथ्या क्या, इतने सत्य लगता है ये जागृत प्रपंच से भी बढ़ करके सत्य लगता है। उस समय जगने के बाद पता चलता है ये जागृत प्रपंच भी इस प्रकार है, शब्द जैसे प्रतीति से अन्य कोई भिन्न अर्थ नहीं, ऐसे कहते वाच्य वाचक का संबंध ऐसा है, शब्द से भिन्न कोई अर्थ है ही नहीं, यही कहना है। अर्थ कुछ अलग सत्ता ही नहीं कह करके सारे शब्द अर्थ का संबंध है, सारे शब्द ओंकार रूप हो गया, इसे शब्द का जो अर्थ वाच्य जितने सब ओंकार ही है। शब्द अभिधान कहते वाचक, अभिधान को प्रधान लेकर के सब कुछ ओंकार ही है। जैसे ये घट है, ये पट है, ये पट कहकर किस शब्द, क्या शब्द कहते, पट शब्द, ये पट है क्या कहते, पट शब्द कहते, सब कुछ ओंकार ही है, ओंकार विदम सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है, यही ओंकार की उपासना है। ओंकार आगे, ओंकार परब्रह्म है, उसके लिए आगे प्रारंभ होगा। इसमें अलग अलग किस ये ओंकार किस प्रकार हुआ, ओंकार की उत्पत्ति कैसे हुई बताया, और ओंकार सर्वात्मक है, सर्वात्मक जैसे साम हुआ, सर्वात्म ओंकार, सर्वात्म साम, सर्वात्म ओंकार, वही उद्गीत कह करके, वही ब्रह्म कह करके, सर्व एक अद्वितीय ब्रह्म है, यही वेदांत सिद्धांत है। आगे आएगा सर्वम कल्विदम ब्रह्म, सर्वात्मक ओंकार यदि समझ आ जाए, सर्वात्मक साम जैसे सब लोग दृष्टि कर चिंतन करे, फिर अंत में सर्वात्म ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए यही प्रक्रिया, इसी क्रम से जाकर के सोपान आरोहण क्रमेण ऊपर पहुंचाने के लिए उपनिषद श्रुति है, माता से भी बढ़कर हितकारिणी, माता जैसे खिलाती प्रेम से, श्रुति इस प्रकार प्रेम से उसको आगे बढ़ाती, उपदेश करके खाद्य दे करके आगे बढ़ा करके पालन पोषण करके ऊपर पहुंचाने के लिए श्रुति। इसे श्रुति में जो उपासना है जो कहते हैं, जैसे माता कोई खिलाती कोई देती तो बड़े प्रेम से देती, प्रेम से ग्रहण करे, इसी प्रकार उपासना इसे थोड़े थोड़े चिंतन करके जाए श्रुति भगवती लेकर के वहां पहुंचा देती है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।